और वापस लौटे अगला ही के पास जाना है। ये कुछ साल यहाँ बीच में हम तो गुजार रहे हैं, गरीबों को मरीजों को मारकर वहां मिला लोगों को अल्लाह देखेंगे कि कौन क्या कर रहा है, अल्लाह ये देखेंगे। और हमें इस दुनिया में जिन जिन मजदूरों को अल्लाह ने मजबूरियाँ दी है, जिन जिन मजदूरों में मजबूर होने के हमारे तकाजे हैं, किसी एक मजबूरियत में मजबूर होने से हमको अल्लाह ने नहीं रोका। हमें छोटे बच्चे हैं, हमें खेलकूद का तकाजा है, हमें खेलकूद से मना नहीं किया। मजबूर मदरसा पढ़ना है, स्कूल पढ़नी है, हमें इससे नहीं रोका। हमें शादी का तकाजा है, हमें शादी से नहीं रोका। अगर किसी को सियासत में हिस्सा लेना है तो सियासत से किसी को नहीं रोका। किसी को ताजिर बनना है, किसी को तजारत से नहीं रोका। किसी को मुलाजमत करनी है, किसी को मुलाजमत से नहीं रोका। कोई मजदूर है तो उसको मजदूरी से नहीं रोका। और कोई अगर बादशाह बनना चाहे तो बादशाह से किसी को नहीं रोका। एक आम तस्वुर बहुत सारे लोगों के ध्यान में ये होता है कि अल्लाह वाला बनने के लिए तो सब चीजों को छोड़ छाड़ कर पहाड़ पर चला जाना पड़े। ये पहाड़ पर चले जाओ और वहां तस्वीर चला जाओ तो क्या बनेगा? तो अल्लाह वाला बनेगा। ऐसा बनना तो हमारे दिन में मना है। अगर कोई सब चीज सब चीजें छोड़ कर सन्यासी बन जाए तो सन्यासी बनना हमारे दिन में मना है। दुनिया सबके दरमियान में बनाई है तो हमें सबके साथ रहना पड़ेगा। कोई अगर सन्यासी बने तो ये गुनाह है। लाइन ये कोई सन्यासी ना बने, कोई राहिब ना बने कि कोने में जाकर पड़ जाए, तो फिर सबके दरमियान में रहना पड़ेगा। खाना भी पड़ेगा, पीना भी पड़ेगा, सोना भी पड़ेगा और सारी चीजें करनी पड़ेगी। ये सारी चीजें हमें बुजुर्ग बनने से रोकेगी नहीं ना, कोई नहीं रोकेगी। ऐसा भी फरमाते हैं हमने अपने नबी को देखा कि जब हम अपने नबी के साथ बैठते थे तो हम जो बातें करते थे नबी भी हमारे साथ बातें करते थे। हम खाने की बातें करते थे तो हमारे नबी हमारे साथ खाने की बातें करते थे। हम दुनिया की बातें करते थे तो हमारे नबी हमारे साथ दुनिया की बातें करते थे। सालों की दूसरी जिले में हमारे नबी हमारे साथ हम जो बातें करते थे वो सारी बातें हमसे करते थे। हमारी अम्मा वो फरमाती है कि मेरे घर के पड़ोसन की सहारी बैठे बैठे बातें कर रहे थे। उस वक्त कच्चे मकान होते थे, छोटी छोटी दीवारें ऊपर छप्पर नहीं पड़े हुए हैं। तो 3 साल भी बातें कर रहे थे कि मैं तो अच्छा अल्लाह वाला बनना चाहता हूँ, उसके लिए मैं क्या करूँगा। तो ये कहता है मैं अल्लाह वाला बनने के लिए शादी नहीं करूँगा ताकि मैं अल्लाह की खूब इबादत कर सकूँ। दूसरे ने बात की कि मैं रात को सोऊंगा नहीं, रात भर अल्लाह की इबादत करता रहूंगा ताकि मैं बहुत बड़ा बुजुर्ग हो जाऊं अल्लाह वाला। और तीसरे ने कहा कि मैं दिन भर रोजा रखूंगा ताकि अल्लाह को खूब राजी करूं। इस तरह की बातें कर रहे थे। तो हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला ने इनकी बातें सुन ली। वो तो बातें करते चले गए। हमारे नबी अलैहिस्सलाम के घर में तशरीफ लाए तो हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला ने हमारी अम्मा जान ने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का जिक्र किया कि 3 आदमी इस तरह बैठे थे वो एक बातें कर रहे थे। अच्छा हम लोग बुलाया और फरमाया आपने ऐसी ऐसी बातें की थी? हाँ हमने ऐसी बातें की थी। तो फरमाया मैं अल्लाह का नबी हूँ और अल्लाह को अल्लाह के नबी से ज्यादा कोई राजी करने वाला नहीं होता। सबसे ज्यादा अल्लाह को राजी करने वाले अल्लाह के नबी होते हैं। मैं अल्लाह का नबी हूँ और मैंने शादी भी की है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के तो 11 निकाह हुए थे, मैंने शादी भी की है और मैं अल्लाह का नबी हूँ। मैं तो रात को सोता भी हूँ और मैं अल्लाह का नबी हूँ और मैं दिन में खाता भी हूँ। हमारे नबी अलैहिस्सलाम का मामूल था कि हम बकर के जिवरात के रोजे होते थे, पीर और जिवरात का रोजे और अय्याम पीर से इस तरह की मंसून है वो काफी। तो बाकी रोजे नहीं होते थे तो बताया कि मैं अल्लाह का नबी हूँ और मैं इफ्तार करता हूँ। ऐसा नहीं है कि बुजुर्ग बनने के लिए कोई रात को सोना छोड़ दे और दिन में खाना पीना छोड़ दे और शादियां करना छोड़ दे। इसमें तो समय लेना पड़ेगा। ये जिंदगी हमारी नबी ने गुजार कर बताई है ताकि कोई ये ना समझे कि अल्लाह वाला बनने के लिए तो ये मलंग बन जा रहे हैं ना। सहाबा भी ऐसी जिंदगी गुजार रहे थे। सहाबा और ये हमारी एक शादियाँ हैं उनमें अक्सर 2-2, 3-3, 4-4 शादियाँ हैं और उनको अलादियाँ भी बच्चे थे। हमारे बच्चे के मसाइल उनके सबके सब बच्चे लगे हुए और कसीर तादाद के बच्चे होते थे। ऐसा नहीं कि मुख्तसर को तो उनके औलादें होती थी, उनके मसाइल मसाइल उनके मशले उनके शादियां सभी चीजें उनके साथ लगी हुई है और उनके कारोबार उनके साथ लगे हुए होते थे। कुछ शागिर्द थे, कुछ मुलाजिम थे, हाँ। और जब हुकूमतें शुरू हुई तो कुछ लोग हुकूमत के हुकाम बने। मजदूर आती थे, रोज मजदूरी में जाते थे, अल्लाह के नबी के दामाद हैं, रोज मजदूरी में जाते हैं। बड़े ताजिरों में है हजरत उस्मान, बड़े ताजिरों में है हजरत उमर, ताजिर है अबू बकर सिद्दीक, वो ताजिर है रजी अल्लाह अन्हु, बार-बार ये ताजिर लोग हैं। जब इजाजत की मजबूरी हो गई हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु को हुजूर के जमाने में, तो अपने पार्टनर के साथ दाढ़ी बना ली, आजादी दूर चला जाना, आजादी मेरा हूँ, ताकि अल्लाह के क्या फरमाते हैं हमें पता चले। तो इजाजत भी कर रहे हैं और हुजूर के मंजिल का भी जा रहे हैं, तरतीब बनाई। ये सभी चीजों के साथ रहना है, इन सारी चीजों के साथ रहते हुए अल्लाह को राजी करना है। क्यों अल्लाह को राजी करना है? कदों और बड़े मकसद हमारे हैं, इसलिए कि ये कायनात अल्लाह की है और लबद ने ईमान वालों के इम्तिहान के लिए इस कायनात में से वजूद किया है। ईमान वालों के अलावा जो मजमा है उनके लिए अल्लाह ने दुनिया को जन्नत बनाया है। जिन्होंने कलमा नहीं पढ़ा उनके लिए दुनिया जन्नत है। अगर कोई अल्लाह को नहीं मानता और कुफर करता जिंदगी गुजारेगा तो इस दुनिया में अल्लाह इसको निभा लेगा। अल्लाह ने अगले जमाने में निभा लिया, वो मरने के बाद अल्लाह उसकी सजा देंगे। लेकिन जुल्म कोई भी दुनिया का आदमी करे बगैर कसूर के, चिड़िया को भी मारेगा तो उसकी पूछोगे, चिड़िया को भी मारेगा तो पूछोगे, जानवर के साथ भी जुल्म जायज नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवारियों के हुकूक चले आए थे, ताकि उन पर बैठे बैठे बातें कर रहा था, तो क्या फरमाया कि ऊंट को सवारी ना, ऊंट को कुर्सी ना बनाओ, बातें कर रही है तो नीचे उतर जाओ फिर बातें करो, ऊंट पर बैठे बैठे बातें करते हो, ये जुल्म जायज नहीं है, किसी पर भी जुल्म जायज नहीं। हाँ, तो जुल्म को मना किया है, लेकिन इसमें इंसानों को परखा जाएगा। इस दुनिया ये दुनिया अल्लाह की बनाई हुई है, हमें भी अल्लाह ने बनाया, ये दुनिया की अल्लाह की बनाई हुई है, और ये उसूल बनाया कि जो इस दुनिया में अल्लाह को राजी करते हुए इन कामों में मशगूल होगा, अल्लाह के रहमो करम में अल्लाह उसको ले लेंगे, ये दुनिया में इससे नफा होगा, अल्लाह अपने रहमो करम में इनको ले लेंगे, अपने रहमो करम में। औलादों को अल्लाह औलादों को अल्लाह माँ बाप के हक में मददगार बना लेंगे, घरवालियों के जरिए से रहमो करम होगा कि अल्लाह पाक जब रहमो करम करेंगे तो ये दुनिया में जिन जिन मजलों में हम मशगूल हैं उसके नफे इंसानों को अल्लाह पहुंचाएंगे। दुनिया में ये चीज जरूरी नहीं है कि कोई आदमी कोई सबक इख्तियार कर ले तो उसका नफा उसे मिलेगी मिले, ये जरूरी नहीं, ये जरूरी नहीं है। कोई आदमी दवा खा ले तो उसको शिफा मिलेगी ही मिलेगी, ये जरूरी नहीं है। कोई आदमी फसल उगा ले तो उसको फसल में नफा मिलेगा ही, ये जरूरी नहीं है। कोई आपकी दुकान शुरू कर दे तो उसकी दुकान में उसको नफा मिलेगा ही, ये जरूरी नहीं है। कोई आदमी खाना खाए तो जरूरी नहीं है उसका खाना उसके सेहत का बढ़िया रहे, सब 50 लोगों में मिलेंगे कि जिन्होंने दवाइयां इस्तेमाल की दवाइयों में इसको सेहत नहीं हुई, 50 लोगों मिलेंगे कि जिन्होंने गल्ले उगाए फसलें उगाई और उनकी फसलों ने उनको मालदार तो नहीं किया, उनकी फसलों ने उनको कर्जदार कर दिया। 50 लोग मार्केट में वो मिलेंगे कि जिन्होंने कारोबार शुरू किए, दुकानें शुरू की और फैक्ट्रियां शुरू की, उनके दुकानों में और उनके फैक्ट्रियों में मालदार बनने के जज्बे और नियत से इन्होंने दुकानें और फैक्ट्रियां लगाई, लेकिन उनके दुकानों में और उनके फैक्ट्रियों ने इनको मालदार नहीं किया, बल्कि उन्हीं दुकानों में और फैक्ट्रियों में वो कर्जदार हो गए। या बजाय मालदार होने की उनकी चटाई उल्टी लपेट दी है, लगभग उनका मीटर उल्टा फेर गया। 50 लोगों में मिलेंगे कि असबाब अच्छे असबाब इख्तियार किए और नतीजे दूसरे आ गए। कि भाई हर आदमी जब निकाह करता है तो हमारे यहाँ बोर्ड लगता है शादी आबादी, शादी खाना आबादी, ये घर की आबादी का जरिए शादी बनेगी। लेकिन 50 लोग मार्केट में वो मिलेंगे कि लड़की लाने के बाद घर जहन्नम में मिली। हर आदमी को घर में बच्चा पैदा हो उसकी आस होती है, तमन्ना होती है मेरे घर में बच्चे का वजूद हो जाए। अगर निकाह कर लिया और औलाद नहीं हुई तो लोगों से दुआएं कर करवाते हैं, दुआ कर तो हमारे घर में बच्चे की पैदाइश हो जाएगी, और जब बच्चा पैदा होता है तो खुशियां मनाता है, अफीका भी करता है और दावत भी करता है और पता नहीं क्या क्या करता है, मुन्ने को लेकर उंगली पकड़कर खेलता है, मौज मस्ती करता है। लेकिन 50 लोग वो मिलेंगे कि जिस बच्चे की पैदाइश पर इतनी खुशियां मनाई गई थी वो बुढ़ापे में उसी बच्चों के आजिज हो चुके हैं, वही बच्चों से हाथ जोड़ रहे हैं, ऐसे नतीजे हैं। ये क्या हो गया, ये क्यों ऐसा हो रहा है, एक मकसद के लिए काम शुरू किया था और उसके अलावा क्यों चीजें हो रही है। बात उसको यह है कि सारी की सारी दुनिया अल्लाह के कंट्रोल में है, हमारे पास जो कुछ है वो भी और जो हमारे पास नहीं है वो भी, ये सब के सब पर अल्लाह की लगाम है। अगर अल्लाह पर गुस्से से इंसानों की कोई नफे की शक्ल जाहिर करे तो उसमें से नफे जाहिर होते हैं, और अगर अल्लाह उसमें नुकसान भर दे तो सबाब वाले उसमें नफे नहीं भर सकते हैं। ये अल्लाह की बातें हैं, ये अल्लाह की बात है। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं कि जिनको अल्लाह पाक जिंदगी में तंगी डाल दें तो वो तंगी वाले हो जाएंगे। मन आवाज बिक्री फिन लहू मईशतम तंगा, अल्लाह कुरान में फरमाते हैं कि ये जो हमारी बातें नहीं सुनते तो उनकी जिंदगियों को हम ये अजाब देते हैं कि उनकी जिंदगियों को मसलों से भर देते हैं। अंबिया की मुबारक मेहनत के रास्ते से, अंबिया के रास्ते से और अनबियों की मेहनत के रास्ते से ये इज्तिमा और ये गुरुओं के जरिए से मजमे को बुलाया जाता है और मजमे को बुलाकर एक बात समझी और समझाई जाती है कि हम जिस दुनिया में रहते हैं उस दुनिया में साल भर हम ये बातें सुनते हैं भाई ऐसा कर लोगे तो ऐसा हो जाएगा और ऐसा कर लोगे तो ऐसा हो जाएगा और ऐसा कर लो तो यूं प्लान बन जाएंगे। ये सारी के सारी चीजें कुछ नहीं, हम जिन शक्लों में हैं उन शक्लों में जिस अल्लाह ने पैदा किया है उस अल्लाह की इताअत की गई, फरमाबरदारी की गई, उस अल्लाह को राजी कर लिया गया तो फिर वो अल्लाह इन शक्लों में चैन और सुकून और अल्लाह आखिर की जिंदगी को भरेंगे। ये अल्लाह का कानून है, ये अल्लाह का दस्तूर है, ये अल्लाह का उसूल है। ये बातें हमको नबियों ने समझाई है इस मुबारक मेहनत के रास्ते से, जो अम्बिया तस्लीमान की जो मेहनत है इस रास्ते में, इस रास्ते के जरिए से जो मजमों को बुलाया जाता है कोई और बातें सुनाने के लिए नहीं, इन बातों को सुनाने के लिए, जो बातें हमसे मुताल्लिक है उन बातों के एहसास के साथ अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए अपने मशगले में ये मुसलमान जिंदगी गुजारने वाला बने। क्योंकि अगर वो अपने मशगलों में अपने से मुताल्लिक जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए जिंदगी गुजारने वाला बना तो ये अल्लाह के रहम करम में आ जाएगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो, ऐसा नहीं हुआ तो फिर अल्लाह खुद कुरान में ऐसा करने वालों के लिए अल्लाह कुरान में फरमाते हैं हम अच्छी जिंदगी तय करेंगे। من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه, اذا ان باتوں کو سمجھا ہوا ہوگا تو ان کے لیے ہم خوشگواری کے اسباب پیدا کر دیں گے, اللہ کرے خوشگواری اللہ کرے ہم لائیں گے, اور جو باتیں نہیں سنے گا نہیں سمجھے گا اور اس کو ایسی سرسری کر کے نظر انداز کرے گا اور اعراض کرے گا تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں پھر ہم ان کو اسی دنیا میں ان کی زندگیوں کو تنگ کر دیں گے, اجیرن کر دیں گے۔ ये जितनों की जिंदगी में मसाइल है इंफरादी या इज्तिमाई वो बस एकदम ऐसी इत्तेफाकी नहीं हुआ है, ये कोई चीज किसी के साथ कोई इत्तेफाकी नहीं है। अगर किसी के इंफरादी मसाइल है, किसी के औलादों के मसाइल है, किसी के कारोबारी मसाइल है या किसी के कहीं से कोई भी मसला है, अल्लाह कुरान में फरमाते हैं लोगों से बात कहो कि तुम्हारा अल्लाह किसी पर जुल्म नहीं करता, वमा रब्बुका बिज़ल्लामिन लिल-अबीद, कि तुम्हारा अल्लाह किसी पर जुल्म नहीं करता। तो फिर ये क्यों हुआ हमारे साथ ऐसा, अल्लाह ने हमें पैदा किया है फिर हमारे साथ क्यों ऐसा हो रहा है। तो अल्लाह कुरान में फरमाते हैं कि ये लोगों के हाथों की कमाइयां हैं, उन्होंने खुद ये बीज डाले हैं जिसके दरख्त हो गए हैं। बेमा कसबत अयदीकुम, अरे लोगों तुमने कुछ ऐसी हरकतें कर रखी है लेकिन हरकतों का ये नतीजा आया है। एक आदमी बम्बई दिल्ली जाना था और बम्बई की गाड़ी में बैठा है, बम्बई पहुंचकर फोन पूछ रहा है कि भाई मैं बम्बई क्यों पहुंच गया। ओ भाई तो गाड़ी में ही बम्बई की बैठा था इसलिए बम्बई पहुंच गया है। ये जितने उल्टी चटाइयां जिसकी भी लपेटी जा रही है अल्लाह कुरान में उनसे कह रहे हैं कि ये तुम्हारे हाथों की कमाइयां हैं। बेमा कसबत अयदीकुम, बेमा कसबत अयदीन्नास, के लोगों ने जो कर रखा है ये उसका बदला भुगत रहे हैं। हमने क्या कर रखा है, हमने ये कर रखा है कि कुछ करने की बातें हमने छोड़ दी है और कुछ छूटने की बातें हमने पकड़ ली है और कुछ बातें हमें समझाई जा रही है लेकिन समझने की चीजों से हम अनजान बनते हैं, बात सुनने को भी हम तैयार नहीं होते। अभी मैंने मजने को बुलाया आ जाओ तो अभी हम आने को भी तैयार नहीं है। हमने कहा भाई मजलिस में बैठ जाओ, मजलिस में बैठना मजलिस का अदब है लेकिन अपनी जगह छोड़कर आना भी गवारा नहीं है। हम हर आदमी अपना अंदाजा कर लेने कितना बात मानने वाला हूं,
कि कोई बात नहीं, अभी घंटा गुजर जाएगा, लेकिन जो आकर बैठे हैं उनका बदला और जो आकर नहीं बैठे हैं उनका बदला अलग होगा। अब घंटा तो सभी का गुजरेगा, लेकिन अंजाम दोनों का अलग अलग होगा। यार अमल को उसके तरफ से ये एक मिसाल है, मानने ना मानने की एक मिसाल है। अब अल्लाह की बात एक बात कही जा रही है, हम हुक्म ये है कि अल्लाह की बात को तवज्जो से सुना जाए। अच्छा सुनना अच्छे अमल का, अच्छे अमल पर आदमी को खड़ा करता है। अल्लज़ीन यस्तमिउन अल-क़ौल फ़यत्तबिउन अहसना, जो अच्छा सुनते हैं वो अच्छे अमल वाले बनते हैं। अब अल्लाह का करें कि कौन अच्छा सुनता है, ये मतलब सारा बैठा हुआ है, हर आदमी अपनी बात जानता है, मैं कैसे सुनता हूँ, तो हमें पता भी नहीं होता। हम जाने अनजाने ऐसे ऐसी चूकें और गफलतें करते हैं, जाने अनजाने में ये करने की कुछ चीजें हमसे छूट जाती है और कुछ न करने की चीजें हम करते हैं। अगर करने की चीजें नहीं की जा रही है ये भी कसूर है, और नहीं करने की चीजें की जा रही है ये भी कसूर है। एक इसको भी निराला करना है और एक किसी चीज का गलती से हो जाना है। अगर गलती से हो गया तो उसके लिए तोबा है, इस्तिगफार है, लेकिन कोई जानकर पेशाब करे मिसर में तो इसका जुर्म बड़ा है। एक बात समझी जा रही है और समझने के बाद अंजाम बन जाना ये बड़ी बात है, ये खतरे की बात है। ये हुजूर अलैहिस्सलाम के जमाने में हर आने वाले को ये चीजें मस्जिद में समझाई जाती थी, लोग मस्जिद में आते थे, इन बातों को समझते थे, फिर इन फिक्रों के साथ अपने माश में जाते थे, अपने मशालों में जाते थे। ये किसी को मस्जिद में बैठकर बिठा नहीं दिया जाता था कि तुम यहीं बैठ जाओ, बल्कि कारोबारी आदमी कारोबार में जा रहे हैं, ताजर आदमी तिजारत में जा रहे हैं, मुलाजिम आदमी मुलाजमत में जा रहे हैं, सब अपने मशगूल में मशगूल होते थे, सारे लोग अपने मशालों में उन उन चीजों के साथ मशगूल होते थे, और फिर ये मशालों में मशगूल होने वाले अपनी उन एहसास के साथ अपने तिजारतों में सुबह से शाम तक का वक्त गुजारते थे, और फिर इन्हीं पैगाम को लेकर लोग अपने घरों में जाते थे, घरों में घर वालियों को ये अल्लाह के नबी सलाम ने जो ये शहादत सुनाए उनको सुनाए जाते थे। तो नतीजा ये होता था कि घर में भी घर की मंसूरत करने के कामों की पाबंद बनती थी और न करने के कामों से एहतियात करती थी, और घर की मंसूरत फिर अपने बच्चों को इन्हीं सोच के साथ परवान चढ़ाती थी, उन्हीं सोच के साथ कि ये चीज जैसे अल्लाह के नबी सलाम के जमाने में लोगों को मस्जिद से मिलती थी, ऐसे ये चीजें लोग मस्जिद से अपने घरों को ले जाते थे, लोगों को ये चीजें घरों में मिलती थी। हाँ, और फिर ये घरों से ये चीज बच्चों में मुंतकिल होती थी। तो घर का एक एक आदमी फिर यह होता था कि उन अमल का आदी बनता था जिससे अल्लाह राजी होते हैं, और उन अमल को छोड़ने वाला हो जाता था जिससे अल्लाह नाराज होते हैं। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो जो आदमी मस्जिद में आया है वो तो बात ले रहा है, और घर में दूसरे 10 मेंबर हैं वो अनजान बन रहे हैं। तो एक आदमी को अच्छी जिंदगी गुजार कर अल्लाह की रहमत को खींचने वाला बना है, और दूसरे 9 आदमी घर में ऐसी हरकतें कर रहे हैं जैसे अल्लाह के मना वो अल्लाह के गुस्से को दावत दे रहा है। इसलिए हुजूर अलैहिस्सलाम के जमाने में मस्जिद से जो बात चलती थी वो एक घर में मुंतकिल होती थी, और फिर उन्हीं चीजों के साथ लोग मार्केटों में रहते। इसीलिए हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हमारी तो मार्केटें भी ऐसी हो गई थी कि जैसी हमारी मस्जिदें होती है, ऐसा फरमाते हैं कि जैसे अल्लाह का इस्तेज़ार मस्जिद में है, करने की चीजें मस्जिद में की जा रही है और न करने की चीजों से मस्जिद में बचाया जा रहा है, वही शक्ल हमारी मार्केटों की भी हो गई। और ये जुमला फरमाते थे तो कुल मुस्लिमीन का मुसल्लाहुम, कई लोगों मुसलमानों के मार्केट उनके मस्जिदों की तरह हुए पड़े। ये बात कहते थे सारी जो जहां जहां मुसलमान के रहने की जगह है ये खयानत ना करे, ये झूठ ना बोले, ये बदनिगाही ना करे, ये ना करने की कोई हरकत ना करे, इसके इतने चर्चे होते थे कि हर जगह जहां ये बसे वहां इसका इसको इस्तेहजार हो जाए। ये कहां कहां रहता है, ये मस्जिद में रहता है तो मस्जिद में इसका इस्तेहजार, ये मोहल्ले में रहता है मोहल्ले में इसका इस्तेहजार, ये मार्केट में रहता है तो मार्केट में इसका इस्तेहजार। फिर इसके साथ बड़े बड़े काम करते थे, हम तो अपनी छोटी छोटी दुकानें लगा कर बैठे हैं, एक दो फैक्ट्रियां लगा कर बैठे हैं। उस जमाने में उनका बिजनेस एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस उस जमाने में वो कर रहे थे। उनका माल यमन से आ रहा है, उनका माल शाम से आ रहा है, और उनका माल बगदाद से आ रहा है। और जब अल्लाह के नबी इस्लाम दुनिया से पर्दा फरमा गए उसके बाद तो इतना इस्लाम फैला है दुनिया में, तीन बर्रे आजमों पर 22 लाख मुरब्बा मील जमीन पर सहाबा फैले हुए थे। हाँ, इतनी दुनिया में उनकी आमद रफ्त हो गई थी, और सब जगह चीजें ला रहे हैं, चीजें बेच रहे हैं। और फिर जब इलाके फतह हुए हैं तो इलाकों में वो हुक्काम बने हैं, हाकिम बने हैं, हाँ हाकिम बने हैं, लेकिन इन सारी शक्लों में रहकर इनका मिजाज नहीं बदला, इनकी बोली नहीं बदली, इनकी चाल नहीं बदली और इनके लहजे नहीं बदले, तो क्या बात हो गई? इन सारी चीजों में इसका इस्तेहज़ार है कि हम अल्लाह के गुलाम हैं, हम अल्लाह के बंदे हैं, ये कुर्सी आज है कल नहीं रहेगी, इसका इस्तेहज़ार है। गुलामों को भी इस्तेहज़ार है, उनके आकाओं को भी इसका इस्तेहज़ार है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु अमीरुल मोमिनीन है, अमीरुल मोमिनीन। एक आदमी ने अगर कहा कि आका हमारे ये मसला है, जरा इंसान को थोड़ा सा हमारी बात सुन लीजिए, तो एक कोड़ा लगा दिया और कोड़ा लगाकर कहा कि हम जब इस काम के लिए बैठते हैं तब तो आते नहीं, और जब हम अपने काम में मशगूल हो गए हमें परेशान करते हो, तो वो आदमी तो चला गया। लेकिन हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु अंदर घर में जाकर कहने लगे कि एक आदमी उमर यूं कहने लगा, उमर तू जलील था, अल्लाह ने तुझे इज्जत दी और फिर तुझे अल्लाह ने लोगों का अमीर बनाया, अमीरुल मोमिनीन बनाया, तुझे मुसलमानों का बादशाह बनाया। अब एक हाजत अपने लेकर एक आदमी तेरे पास आता है तो उसको कोड़ा मारता है, अल्लाह के वक्त कयामत के दिन क्या जवाब देगा? ये तीन पर आजमों का बादशाह अपनी जात का एहतसाब कर रहा है, आखिरत का इस्तेहज़ार है। हाथ में छड़ी ली और उस आदमी को ढूंढने के लिए निकले, एक आदमी कहाँ चला गया, पता चला कि फला है, उसको बुलाकर कहा भाई मेरी गलती हो गई है, लकड़ी ले लो, मुझसे बदला ले लो, क्योंकि जानते हैं कि अगर ये नहीं हुआ सफाई तो उसका अंजाम क्या होगा वो जानते हैं। इस बादशाह की कुर्सी पर बैठकर दिमाग में उसकी गर्मी नहीं आई है, लहजे नहीं बदले हैं, चाल नहीं बदली है, कि अपने आप को लगाम डालकर जीना सीखा हुआ है, तो बादशाह के कुर्सी पर भी सीखे हुए गुलाम है, बकरे चला रहा है। अब्दुल्ला इब्ने उमर यही हजरत उमर के बेटे वहां से गुजर रहे हैं और गुलाम से पूछ रहे हैं कि भाई एक बकरी हमें चाहिए, बकरी दे दो। कहने लगा बकरी मेरी नहीं है, मेरे आका की है। तो वो इम्तिहानन पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं कि आका से कह देना कि एक भेड़िया खा गया, बकरी का कह देना कि बकरी को भेड़िया खा गया। तो बकरियां चराने वाला गुलाम ये कह रहा है कि मैं आका को तो ऐसा जवाब दे दूंगा, लेकिन आका का अल्लाह, मेरा अल्लाह देख रहा है, मेरा अल्लाह कहाँ चला गया है, उसको क्या जवाब दूंगा? फाइन अल्लाह, अल्लाह कहाँ चला गया? ये गुलामों को भी इस्तेहज़ार है और बादशाह को भी इस्तेहज़ार है। जब गाड़ी चलाना आती है कोई भी गाड़ी सामने देता है, तुम्हें चलाना आती है जाओ चलाओ, जिसको चलाने नहीं आएगा उसको कौन गाड़ी सौंपेगा? कैसे नहीं आती है, हमें गाड़ी चलाना नहीं आती है, क्या बात होती है? मुझे तो मैं तो अच्छा खासा सेहतमंद था, छह दिन में गया तो यूं थोड़े हाथ करके चलते हैं। अरे इसको क्या हो गया, क्या बीमारी हो गई? ये अच्छा खासा सीधे सीधे हाथ करके चलता था, शरीर थोड़े थोड़े चलता है, तो ये हजरत छह दिन से जिम जाते हैं, तो छह दिन की जिम हमें तो चौड़ा कर देती है। हाँ हम साइकिल पर थे, अल्लाह पाक ने हमें बाइक दे दी तो उस पर हम तो टहरे बैठते हैं, क्या भाई इसको क्या हो गया? अभी इसके पास हजरत के पास बाइक आ गई इसलिए टहरे बैठे हैं। हम तो रक्षा चलाते हैं तो तांडिया बाहर निकाल देते हैं, तो क्या हो गया? रक्षा चलाता है तांडिया बाहर निकाल दिया है, हमसे हजम भी नहीं होता, हमसे इतना भी हजम नहीं होता, हम अल्लाह से पता नहीं क्या क्या मांगते हैं, जो किया है वो भी हमसे तो हजम नहीं हो रहा। अल्लाह पाक ने हमें अम्मी के पेट में खूबसूरत बनाया, अल्लाह पाक ने खूबसूरत बनाया, ये और किसी ने बनाया है। अब अल्लाह ने बनाया उससे हम खूबसूरती को गुनाह में इस्तेमाल करते हैं, खूबसूरत अल्लाह ने माल बनाए हैं, मेरे बाबा ने मेरी माँ ने नहीं बनाए हैं। अब उसको पता नहीं कैसे कैसे अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, तीन बार पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, अल्लाह का बनाया हुआ है। अपना जायजा लेना हम भूल जाते हैं, कभी कौन हूँ, क्या मैं ये गोबर का पलिंगा हूँ, गोबर का पोटला हूँ, ये मेरा पूरा जिस्म बदबू से भरा हुआ है, मेरे मुंह में से बदबू आ रही है, मेरे नाक में बदबूदार चीज है, मेरे जिस्म के पसीने में बदबू है, मेरे पेशाब में बदबू है, मेरे पखाने में बदबू है, मैं कहीं से भी ठीक नहीं हुई, तो मेरे अल्लाह ने ये कमड़ी का गिलास उस पर बिखरा दिया। मुझे पता नहीं मेरे लहजे क्यों खराब हो जाते हैं, मेरे जीवन खराब हो जाते हैं। हमें अपने आप को संभालना नहीं सीखा, तो हम क्या कर सकते हैं कि जब हमें अपने जीवन संभालना नहीं सीखे तो हम नियामतों में अल्लाह के भी बागी बन जाते हैं और अल्लाह के बंदों के भी बागी बन जाते हैं। जिस माँ ने देवा सिखाया उस माँ को हम खामोश रहना सिखाते हैं, जिस माँ ने हमको बोलना सिखाया उस माँ को हम उससे ज्यादा तेज बोल रहे हैं, कि हमारे हौस से हमारे सामने हमारी माँ बोलती नहीं खर्राती है, हमारा बाप जिस बाप ने हमारे लिए उंगली हमारी उंगली पकड़कर हमें चलना सिखाया और जिस बाप ने हमें खड़ा करने के लिए गर्मी बर्दाश्त की, ठंडी बर्दाश्त की, और बारिश के बाद बारिश बर्दाश्त की। उस बड़े बाप से पूछो उसने क्या क्या बर्दाश्त किया, किताबों में लिखा है। आपने भी बड़ा तजर्बा किया होगा कि जब घर में बच्चा पैदा हो जाता है उस दिन से बाप अपने लिए नहीं जीता, अपनी औलाद के लिए जीता है। उस दिन से वो अपने लिए जीना छोड़ देता है। जिस बाप ने अपनी पूरी जान लगा दी वो बाप उसके टुकड़े का मोहताज हो जाता है। हम अल्लाह के भी बाजी बन जाते हैं, अल्लाह के बंदों के भी बाजी बने हुए हो। और इस सारी बगावत के बाद बंदा ये चाहता है कि अल्लाह पाक मेरे ऊपर 100% मेहरबान रहे कि हमने ये अभी लगाम गाड़ने वाली जिंदगी नहीं सीखी है। क्यों क्या बात हो गई कि हमने ये जिंदगी में अल्लाह पाक क्या नतीजे लाते हैं उसको नहीं सुना है, नहीं समझा है। एक वायर है उसमें करंट है, हमारा ये शौर हो गया कि भाई करंट क्या नतीजा लाता है। तो तुम किसी को भी कहो भाई ये वायर है तो इसको पकड़ लो, तो बच्चा भी कहता है कि मैं नहीं पकड़ूंगा। भाई क्या बात है, इससे अंदर करंट है वो मौत लाता है। साफ है, जिंदा साफ है। हम किसी से कहें भाई वहां से गुजर लो तो हमारे बच्चे को ये ध्यान आ गया कि सांप तो सांप डसता है, बिच्छू डसता है, उस तरफ नहीं जाना, उस तरफ जाने से अंदर उठता है।
साला गालियां पड़ी
वो ये करने के कामों पर क्या नजर देंगे और न करने के कामों पर क्या अंजाम होगा। उसको इतना बोला गया, इतना बोला गया, इसको इतना सुना और इतना समझाया गया कि इन करने के कामों की रगबत पैदा हो गई और करने के काम छूटने पर डर होने लगा कि अगर ये करने के काम छूट गए तो अल्लाह कितना नाराज होगा। और न करने के काम किए गए तो न करने के कामों से अल्लाह कितने नाराज होंगे। उसका इतना डर जिंदगियों में आ गया जैसे एक फायर के पकड़ने का डर और एक सांप और बिच्छू के पास से गुजरने का डर और एक फाड़ खाने वाले जानवर के पड़ोस से गुजरने का डर उससे कहीं गुना ज्यादा अल्लाह के हुक्मों के टूटने का खौफ जिंदगी में आया हुआ। तो वो तालीम के हल्के से मस्जिद में इसको सुनाया जाता
है। जब इटली पे आया
इसका यकीन कि अगर माँ बाप की नाफरमानी हो गई, माँ बाप की नाफरमानी तो इसका क्या अंजाम होगा वो समझाया गया था। अगर पड़ोसियों के हुकूक की पायमाली हुई है तो उसका क्या अंजाम होगा वो समझाया गया था। तो लोग डरते थे, पड़ोसियों के मामले में डरते थे। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अपने घर वालों के पास जाकर कहने लगे कि जो भी तुम खाना बनाओ अपने पड़ोसी को भेजो। हालांकि उनका पड़ोसी यहूदी था और फरमाते थे उसमें सालन ज्यादा डाल दो लेकिन पड़ोसी को भेजो। डर है कि हमारे नबी ने पड़ोसियों के हुकूक समझाए हैं, अगर उनसे वादा नहीं हुए तो हमारा क्या अंजाम होगा। ये हमारे माँ बाप है उनके साथ कह रहे थे वो हमें अंजाम समझाया था। हमें मार्केट में तजारत करनी है उसमें खुदा ना करे कोई उन्नीस चीज हो गई तो क्या अंजाम होगा वो बातें समझी हुई थी। ग्राहक भी डर रहा है और बेचने वाला भी डरा हुआ है, बादशाह भी डरा हुआ है, पब्लिक भी डरी हुई है अल्लाह के खौफ से कि अगर हमने अपने बादशाह के हाथ में कोई गुस्सा भी की तो क्या अंजाम होगा। और बादशाह ये डर डरा हुआ है कि हमारी पब्लिक का जो हम पर हक है अगर उसने हमसे कोई खयानत हुई तो अल्लाह को वहां जवाब देना है। तो ऐसे खुशगवार माहौल वजूद में आया, हर एक दूसरे का हक अदा कर रहा है, बाप औलाद का हुक्म कर रहा है, औलादे माँ बाप का कर रही है, बीवी शोहर के साथ अच्छा बर्ताव करती है और शोहर शोहर बीवी के साथ अच्छा बर्ताव करती है। एक खुशगवार जिंदगी मदीना मुनव्वरा में वजूद में आई और ऐसी खुशगवार वजूद में आई कि लोग एक दूसरे के हकूक अदा कर रहे थे। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के जमाने में एक लड़की आई है यमन से, रसूलुल्लाह आई है हज के लिए आई है। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला ने उसको पूछा कि अल्लाह की बंदी तू यमन से आई है अकेली आई है और तेरे पर सोना जेवर जेवरात लगे हुए हैं, तू ये बता रास्ते में तेरे साथ कैसे गुजरी। तो वो ये कहने लगी कि पूरा रास्ता मैंने देखा कि मेरे ऊपर गलत निगाह करने वाला कोई आदमी नहीं था, कोई किसी आदमी ने उस पर गलत निगाह नहीं की है। जो मेरे से बड़ी उम्र के लोग थे उन्होंने मेरे साथ बेटी वाला मामला किया और जो छोटी उम्र के थे उन्होंने मेरे साथ बहन मेरे साथ भाई भाई बहन जैसा मामला किया। और जब ये बातें नहीं समझी जाती है, जब रास्ता चलने वालों को समझाया गया तो रास्ता चलने वाले इतने पाबंद हो गए, और जब ये बातें नहीं समझी जाती तो हमारा तो आदमी मस्जिद में बैठ कर मस्जिद के सामने के घर में झांकता है। मस्जिद में बैठा है नमाज में आया है और सामने के घर में खिड़की खुली है वहां जाता है। हम अभी जगह पर थे तो वहां लड़ाई चल रही थी, क्या बात हो गई जो सामने के घर में मस्जिद में बैठा हुआ झांक रहा है। जो लड़की को छेड़छाड़ी हो रही है अल्लाह के घर में डर कर अल्लाह का खौफ नहीं है। रसूलुल्लाह ने तवाफ करते करते अल्लाह का डर नहीं है, अल्लाह का खौफ नहीं है। जब मेहनत छोड़ती है और फिर चीजें नहीं पर जाई जाती सारी बातें होती है। ये मुबारक जो मेहनत में अल्लाह के रास्तों में चार चार महीने और दिल्ली जाने की बात कह रहे हैं, हमारे रहनों में बात आ गई कि तबलीग वाले तशहर करते हैं, तबलीग वाले तशहर करते हैं, ये तबलीग वाले तशहर करते हैं, ये तशहर नहीं है। ये चार महीनों में एक माहौल में ले जाने की बात होती है, एक माहौल में एक पिता में ले जाने की बात होती है, जो सेवा में उसको वो चीज मिलेगी जिसके ऊपर इसको खड़ा करना है। यह माहौल का असर होता है। अभी ठंडी है, सबको माहौल का असर है, सबको ठंडी लग रही है, कोई इसमें वो ठंडी से उससे बच नहीं सकता, सबको लगेगी। ये चार चार महीनों में ये दिनों में अल्लाह से बोलेगा, अल्लाह को सुनेगा, अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक जिंदगी के गुजारने पर अल्लाह क्या देंगे और अल्लाह के नाफरमानियों पर अल्लाह कितने बड़े नाराज होते हैं। जब उसको चार चार महीने में सुनेगा, इस यक्षुरी से सुनने पर इसके विचार, उसके सोच, उसके जज्बात, उसका रहन सहन ये सब बदला खाएगा, उसके अंदर अल्लाह का डर आएगा। ये सारी बात पाबंदी वाली जिंदगी मालूम से नहीं आती है, मालूम तो पूरी दुनिया को है। ये बेनमाजी जो पांच वक्त की नमाज छोड़े हुए हैं उनसे पूछो कि क्या पांच वक्त की नमाज फर्ज नहीं है, तो सारे कहते हैं कि पांच वक्त की नमाज फर्ज है। फिर इसको मालूम तो है, ये क्यों नहीं पड़ता है, इसका यकीन कमजोर है कि नमाज पढ़ने पर क्या मिलेगा और नमाज छोड़ने पर क्या होगा, इस चीज ने इसको बेनमाजी बना रखा है, इसका यकीन कमजोर है। ये जितने भी पर्दा औरतें हैं उन सबको पूछो कि क्या पर्दा फर्ज नहीं है, तो सारी कहती है पर्दा फर्ज है। फिर क्या बात हो गई कि क्यों पर्दा नहीं करती हो, कहिए ये अंजाम से वाकिफ नहीं है कि बेपर्दगी पर अल्लाह कितने नाराज होते हैं। शराबी को पूछो शराब के नशे में ये कहता है कि शराब हराम है, फिर क्यों नहीं छोड़ता, ऐसे ये पता नहीं है कि शराब पीने से अल्लाह कितने नाराज होते हैं। ये जब अल्लाह के रास्ते में जब ले जाया जाता है उसमें ये मालूमात के अलावा उस यकीन को बनाने की मेहनत होती है कि आदमी घंटों का तालीम के हल्कों में इसलिए यकीन को बनाए, ईमान को बनाए कि अल्लाह के अवामिर के पूरा करने पर अल्लाह क्या देंगे और अल्लाह के हुक्मों के तोड़ने पर अल्लाह कितने बड़े नाराज होते हैं। ये बात समझ में इसको आ जाए, अल्लाह का एहसान है कि जब ये बात समझ में आती है तो बच्चों को आपने भी देखा, हमने भी देखा कि जो घर में एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ता था, एक माहौल में उसने वक्त गुजारा, तो वो बच्चा पांच वक्त की नहीं तहज्जुद का पाबंद बन जाता है, तहज्जुद गुजार बनता हुआ। और जो घर में कभी एक चम्मच नहीं उठाता था वो अल्लाह के रास्तों में 15-15 आदमियों का खाना बनाता है। तो इसको क्या हो गया, कुछ नहीं, उसको माहौल मिला है, और माहौल में गया और माहौल में जाकर तहज्जुद गुजार बन जाता है, अल्लाह के सामने गरम गरम आंसू बहाने वाला बनता है, और पता नहीं कितनों के साथ माफी मांगने वाला बनता है जिनके साथ गलतियां होती है। बाद शादी कहते हैं हमारे साथ हमारा बेटा चार महीने गया था और तो वो फर्ज नमाज भी नहीं पढ़ता, क्या फायदा हुआ, ऐसा कहते हैं कि उसको क्या, ओ भाई ये शिकायत मत कर, ये शिकायत मत कर, क्यों भाई वो बेटा तो ऐसा ही था लेकिन एक माहौल में उसको ले गए थे तो उस माहौल में वो तो तहज्जुद गुजार बन गया था, गुजार खिदमत गुजार बन गया था। लेकिन जब वक्त लगाकर जिस घर में वो आया है, जिस मोहल्ले में आया है, उस मोहल्ले का माहौल खराब है, उस मोहल्ले ने उसको खराब कर दिया, उस घर के माहौल का, उस घर का माहौल खराब है, उस घर के माहौल ने उसको खराब कर दिया। जिस खराब माहौल से गया था उस खराब माहौल में वापस आया है, उस जिला ने इसको खराब, भाई यमुना से नहीं गाड़ी निकली थी लेकिन जिस हाईवे पर गाड़ी को चलना था वो हाईवे टूटा हुआ है, वहां पत्थर पड़े हुए हैं, वहां गड्ढे पड़े हुए हैं, वहां कांटे पड़े हुए हैं, उसने इसकी हवा निकाल दी, वरना वो तो तहज्जुद गुजार बन गया था। अब घर के 10 मेंबर है, एक तहज्जुद गुजार बनकर आया है और 9 बेनमाजी है, अब बेचारा ये कुछ कितना टक्कर लेगा, कितने दिन टक्कर लेगा। कोई पानी की टंकी है 500 लीटर की, वो गरम गरम या ठंडा पानी, ठंडा पानी 500 लीटर, उसमें एक आदमी गरम गरम पानी 1 लीटर डाले तो सच बताओ कि ठंडा पानी गरम कर देगा या गरम पानी ठंडा हो जाएगा। अरे बोलो भाई, 500 लीटर इस साइड है और इस साइड 1 लीटर है, ये 500 लीटर गालिब आएगा और 1 लीटर ठंडा हो जाएगा। घर के 9 मेंबर उसी सीमा में हैं, अब हम ये तमन्ना करें कि हम तो सब उसी में रहें और हमारा बेटा वो जुनेद बगदादी बना रहे तो रहेगा वो भाई, वो भी इंसान है, वो भी असर लेता है, ये थोड़े दिनों में वो असर लेगा। इसलिए हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कि हमारी ये बड़ी जरूरत की चीज है, अगर हमने इसकी फिक्र नहीं की तो ये हमारी नस्लें हमारे सामने जाहिर हो जाएगी, हर तल्खियां हमारे सामने होगी, हमारे सामने बदतमीजियां होगी, और इतनी जो हो रही है वो कुछ भी नहीं है, ये जितनी अभी हम देख रहे हैं, ये जो बूढ़े लोग हैं वो इस पर कूदते होंगे, सिस्टियां लेते होंगे, जो अभी माहौल है, जो फिजा है उसको देखते होंगे तो सोचते होंगे कि हमने कभी 10 साल पहले ऐसा सोचा भी नहीं था कैसा होगा, हमने सोचा भी नहीं था कि इतनी बेहयाई आ जाएगी और इतनी बेदीनी आ जाएगी, ये सोचा भी बुढ़ा में नहीं था, हमने वो पिछले तकड़े वाली जिंदगी मैंने और आपने नहीं देखी, थोड़ी बहुत हमें भी देखने मिली, लेकिन अभी जो 20-22 साल की जनरेशन है उन्होंने तो कुछ नहीं देखा, जो पिछले की हया लज्जा शर्म, 20 साल पहले भी कुछ हया लज्जा शर्म थी, लेकिन अब 1.5 साल में बहुत पलटा खाया है। अभी आगे इतना खतरनाक पलटा खाने वाला है, इतना खतरनाक, अल्लाह के पना, अल्लाह के पना। क्या पलटा खाने वाला है कि इतना खतरनाक पलटा खाने वाला है? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर बात इस उम्मत में होगी जो बनी इसराइल में हुई है। और फरमाया, अगर बनी इसराइल में किसी ने अपनी माँ से गलत काम किया है तो इस उम्मत में भी ऐसे बच्चे पैदा होंगे जो अपनी माँ से गलत काम करेंगे। और लड़कियां अपने घर में अपने आकाओं को जन्म देगी, घरों में बुराइयां वजूद में आने वाली है। कले दल अमतहा, घरों में जिना वजूद में आ जाएंगे। औरतें खींचेगी बच्चों को, वो बच्चे बच्चियां मर्दों को खींच के चल जाएंगे। हम ये सोचे होंगे कई समंदर पार की लड़कियां, ये ना पूछो कि समंदर पार की लड़कियां वो मेरी और आपकी लड़की भी हो सकती है, मेरी और आपकी बहन भी हो सकती है। ये सब होने वाला है। अब कोशिश इस मुबारक मेहनत के रास्ते से की जाती है कि अल्लाह के रास्ते का मेहनत करके बच्चों को अल्लाह से जोड़ दिया जाए, अल्लाह के डर से जोड़ दिया जाए। तो वो चीजें तो होने वाली है जो हमारे नबी ने फरमाई है, लेकिन उसमें मैं और आप ना मुबतला हो जाएं, मेरे और आपकी नस्ल में मुबतला हो जाएं, मेरे और आपके बच्चे उसमें मुबतला हो जाए, वरना ये सब होने वाला है। रास्ता चलते चलते बुराइयां होगी, रास्ता चल रहा होगा आदमी और लड़का लड़की बुराई करता होगा, कोई ये नहीं कहने वाला होगा कि भाई मत कर, उसके ऊपर कोई चादर डाल देगा, ये कहेगा सीधा कोने में जाकर कर ले। ये ना सोचे कि वो पढ़ाई की बेटियां होगी, वो मेरी और आपकी माँ भी हो सकती है, मेरी और आपके बेटे भी हो सकती है। ये सारी की सारी मेहनत, ये सारी की सारी मेहनत उसकी हालत कर ले, वरना अभी जो कुछ है वो कुछ नहीं, उससे भी ज्यादा होने वाला है। तो उसका हल क्या? तो उसका हल उसके अलावा कोई नहीं, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें दीन देकर गए हैं, और जो दीन वो दीन नहीं हमारी हिफाजत है, और दीन उसी तरीकों से जिंदा होंगे जो हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहनत देकर गए। ये तबलीग की मेहनत उन सही जिंदगियों को वजूद देने की मेहनत है, उन सही फिक्रों को उजागर करने की यह मेहनत है। देखो ये जिन बच्चों पर मेहनत हुई है, ये बच्चे अपनी जवानी को छोड़कर इस्तेमाल में आए हैं। हालांकि जवानी जवानी दीवानी होती है, अरबी में मकूला है, शबाब शबाब तुम मैंने सुनो, ये लोगो जवानी दीवानी होती है, ये पागल आदमी होता है, पागल पागलों की तरह हरकतें करता है, लेकिन इस वजह में अक्सर जवान है। भाई इसको कौन लाया? ये थोड़ी बात का समझाना इनको यहाँ लाया है कि ये मजमे ने कहीं ना कहीं बात सुनी, कानों में इनसे बात पड़ी, या तो गश्तों वालों ने इन पर मुलाकातें की, या इन पर 2.5 घंटे वालों ने मेहनत की, या मस्जिद के इमाम साहब की मेहनत हुई, या कहीं ना कहीं से किसी ने इनको बातें समझाई। उन समझाने का असर ये हुआ कि माशाल्लाह अल्लाह का फजल इस पर डाल जाकर अभी बैठे, कि थोड़ी सी बात समझाई गई तो माशाल्लाह पिटाल में आकर बैठने वाले बने। अगर इन पर लगातार मेहनत हो तो ये बच्चे अल्लाह के वली बन जाएंगे, लेकिन उसकी मेहनत छोटी होगी। तो ये बाइस्तेदाद बच्चे, बाइस्तेदाद मजमा ऐसे हो जाता है जैसे हमारी ऐसी जमीन है जिसमें जाफरान उग सकता है, जाफरान, लेकिन उस जमीन पर खेती करना छोड़ दिया, खल चलाना छोड़ दिया, पानी चलाना छोड़ दिया, तो वो जमीन क्या हो गई? जब बंजर हो गई, बंजर, और जमीन खुश हो गई, सख्त हो गई, सख्त। अब वो बंजर जमीन में क्या हुआ? तो वो बंजर जमीन में कांटे उग गए, कांटे कांटे उग गए। ये कांटे उगाने नहीं पड़ते, कांटे खुद ब खुद उग जाएंगे। बंजर जमीनों में कांटे उगाने नहीं पड़ते, कांटे खुद उगेंगे, बबुल के झड़ उगेंगे, और बबुल के झड़ जाफरान उगाने वाली जमीन को जंगल बना देंगे, जंगल। और फिर क्या होगा? क्या वो जंगल में जमीन का मालिक जब जाएगा ना, तो वो उसमें रहने वाले जानवर जमीन के मालिक को डस लेंगे। उसमें जब जंगल बनेगा तो सांप भी आएंगे, बिच्छू भी आएंगे, जहरीले जानवर भी आएंगे, और किसको डसेंगे? तो उस जमीन का मालिक को डसेंगे। ये बच्चे हमारे घर में, हमारा घर जंगल बन चुका होगा, जंगल, और हमारे बच्चे जहरीले जानवर बन चुके होंगे, और हमारे बच्चे फिर हमारे माँ बाप को डसेंगे, भाई को डसेंगे, बहन को डसेंगे। हाँ, हम लोग हर साल मदरसों में तस्वीर के लिए जाते हैं, तो बच्चों की साल में फारे होने वाले, तो एक मदरसे में गए, तो एक इलाके को उसने एक 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 मुफ्ती साहब ने फतवा दिखाया, ये देखो एक बच्चे ने मसला पूछा है। क्या मसला पूछा है? कि मैं 12 साल से अपनी माँ के साथ गलत काम कर रहा हूँ, अभी तबीयत में जाकर आया, मुझे तौबा करनी है, मेरी तौबा कैसे होगी? बेटे ने माँ को डस लिया, बेटे ने माँ को डस लिया, घर जंगल बन चुका। ये सगा भाई बहन पर गलत निगाह डाल रहा है, बेटा माँ पर गलत निगाह डाल रहा है, घर जंगल बन चुका, और औलादे जानवर बन चुकी, जानवर। एक मदरसे में हम लोग गए, एक आदमी ने कटरा दिखाया मुफ्ती साहब ने, ये मसला आया है। क्या मसला है? कहते बाप ये कह रहा है कि मैं इतने साल से अपने बेटे के साथ बड़ाई कर रहा हूँ, घर मिल ये तबलीग की मेहनत, ये खाली चलन फिरत का नाम नहीं है। इस नकल हरकत के जरिए से ये सारी चीजों को वजूद देना हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कि हमारे लिए है कि हम अपना वक्त फारिग करें और अल्लाह के रास्तों में जाने को जरूरी समझें और वक्त फारिग करके अपने ईमान को बनाएं, अपने यकीन को बनाएं और 4 महीने पाबंदी वाली जिंदगी गुजार कर पाबंद बनकर रहना सीखें, पाबंद बनकर रहना सीखें। अल्लाह के रास्तों में ये अमल के साथ वक्त गुजार कर पाबंद बनकर रहना सिखाया जाता है। और जब वक्त लगा कर आए तो फिर बाकी वक्त मकाम पर गुजारना है, तो मकाम पर वो माहौल बनाए कि जिसमें कंपनी से बनी हुई गाड़ी टूट न जाए, हाईवे अच्छा बन जाए। इसके लिए हमारे हजरत फरमाते हैं मकाम में मेहनत की जाए। इसलिए अक्सर मजमा 4 महीने मानो ज्यादा से ज्यादा अल्लाह के रास्ते में जाएगा, 8 महीने मकाम पर रहेगा। या एक आदमी 40 दिन जाता है, फिर उसके बाद 320 दिन घर पर रहेगा। अगर 40 दिन उसकी एक हैसियत नहीं और मकाम पर उसको माहौल नहीं मिला, तो फिर जो मकामी माहौल होगा वो मकामी माहौल में वो 40 दिन में जो बनाकर आया है वो सब टूट फूट कर खत्म हो जाएगा। इसके लिए क्या किया जाए? इसीलिए ये मुसलमान जहां जहां रहता है वहां उसको ईमानी फिजा मिलनी चाहिए। ईमानी फिजा उसके सबसे पहले के रहने की जगह या सबसे पहले उसके रहने की जगह वो उसका घर है, उसका घर है। इसीलिए हमारे नबी इस्लाम को हुक्म यह हुआ कि नबी जी अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाओ और अपने औलादों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। अल्लाह ने हुक्म दिया अपने नबी इस्लाम को खूब अनफोसा कुम्बा है कुम्बारा, कि नबी जी अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। तो हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि जहन्नम की आग से कैसे बचाएंगे? ये घर का माहौल ऐसे बनाओ कि हमारे घर में पलने वाला बच्चा जैसे उसको सारी चीजें हमारे घर से मिलती है, ऐसे उस घर से उसकी ये जरूरत ही पूरी हो। घर से उसके कपड़ों की जरूरत घर से पूरी हो रही है, और उसके खाने की जरूरत घर से पूरी हो रही है, उसके दवाई दारू की जरूरत घर से पूरी हो रही है, उसकी बीमारी और हानि की जरूरतें घर से पूरी हो रही है, उसको अल्लाह की पहचान की जरूरत घर से पूरी हो, उसके घर से पूरी हो। तो उसके घर में ये जरूरत पूरी करने के क्या सवाब होंगे? हमारे उधर फरमाते हैं उसके लिए तो बुनियाद सीखे। अगर कोई आदमी ये चाहता है कि मेरी नस्ल इससे बच जाए और मेरी नस्ल मेरी आंखों की ठंडक बने, उसके लिए क्या किया जाए? उसके लिए घर के अमल मुझे चलाए जाए। घर के अमल हमारे घर जैसे हम खाना खाते हैं होटल बनते हैं, हम आराम करते हैं, हमारे घर लॉज बनते हैं। ईमान वाले के घर को ईमान वालों का घर बनाओ। क्या हमारे घर में अल्लाह रसूल के तस्करे जिंदा करने की जरूरत है, आखिरत के तस्करे जिंदा करने की जरूरत है? हमारे घरों में पूरी दुनिया के तस्करे जिंदा है। अगर तस्करे नहीं होते तो अल्लाह रसूल के तस्करे जिंदा नहीं है। इतना बड़ा मजमा बैठा है, अक्सर मस्जिद और जमात के साथ ही बैठे हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, हम अपना जायजा लें, ऐसे सब करें कि हम हमारे घरों में क्या क्या तस्करे करते हैं। अगर फजाइल की किताब की तालीम न की जाए तो मैं अपने घर में अल्लाह रसूल की बात कब करता हूँ? हर आदमी जायजा ले कि किसी के निकाह को 5 साल हो गए, किसी को 10 साल, किसी को 15 साल, किसी को 20 साल, किसी को 25 साल, किसी को 30 साल हो गए। मैंने अपनी बीवी को बिठाकर कब बात की थी और मैंने अपनी बीवी को कब आखिरत का इस्तेमाल करवाया? अल्लाह की बंदी तू मुझे नहीं जानती थी, मैं तुझे नहीं जानता था। एक जुमले से अल्लाह पाक ने हमको रिश्ते से जोड़ दिया। और किताबों में आता है कि जब तुझे मेरी कब्र में सोना है, मुझे मेरी कब्र में सोना है, तू मेरे काम नहीं आ सकेगी, मैं तेरे काम नहीं आ सकूंगा। और औलादों के मुताबिक रिवायतों में आता है हर आदमी की औलाद या तो जन्नत है। हमारे नबी ने फरमाया कि हर आदमी की औलाद या तो जन्नत है या जहन्नम है। मैंने अपने बीवी को बिठाकर कब बात की? अल्लाह के बंदी ये मेरी औलाद या मेरी और तेरी औलाद हमारी आंखों की ठंडक बने और हमारी ये जन्नत बने, उसके लिए देवरात क्या कर सकते हैं? लाओ हमारा पहले गौर करें, फिक्र करें। हमने कब इसके तस्करे अपने घर में किए? हमारी शादियों के बाद से लेकर आज तक हमारे घर इनसे खाली हो गए। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने फरमाया कि भाई अगर हम वो जबानी बातें नहीं कर सकते तो कम से कम ये फजाइल की किताबों को, ये जो फजाइल अमाल की किताब और फजाइल सदकात की जो किताब है, ये मामूली किताब नहीं है। ये क्या किताबें हैं? हमारे बुजुर्गों ने कहा इसको थोड़ी देर रोजाना घर में तालीम करो। क्या क्या उसके नफे हैं कि ये हम इसको रस्मी किताबें समझ रहे हैं कि ये फजाइल अमाल और फजाइल सदकात की किताब ये रस्मी किताबें हैं? ये रस्मी किताबें नहीं है। कितनी क्या चीज है जो हमारा दीन है? हमारा दीन 5 शोबों का नाम है, 5 शोबों का नाम। क्योंकि वो 500 का दिन मुकम्मल होता है, एक आदमी का दिन मुकम्मल होगा उसमें सबसे पहला ईमानियत है, अल्लाह के साथ का ताल्लुक है, फिर इबादत है कि अल्लाह के अवामिर है, फिर मुआमलात है लोगों के साथ रहन सहन है, फिर माशरत है लोगों के साथ रहन सहन है, और फिर अखलाकियात है कि पूरी उम्मत के साथ कैसे रहना। जब इन 500 को आदमी पता करेगा तो उसका दिन मुकम्मल होगा। एक आदमी ने ईमानियत अच्छी कर ली और इबादत में झोल हो गया तो ये सच्चा है। ऐसा है कि स्कूल में पढ़ता था, 5 चौपड़ियां थी, दो सब्जेक्ट में कामयाब हो गया, 3 सब्जेक्ट में नाकाम हो गया, ये आगे की क्लास में नहीं बढ़ाया जाएगा। ईमानियत की अच्छी हो गई, इबादत की अच्छी हो गई, लेकिन मामला खराब है तो मामला की खराबी उसको ले रुलेगी। हाँ, मामला की खराबी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में हमारे नबी इस्लाम ने मिसाल दी कि जानते हो इस उम्मत का मुखलिस कौन है? इस उम्मत का मुखलिस, लोगों ने फरमाया, वो जिसके पास पैसे ना हो, माल ना हो। तो फरमाया, नहीं, इस उम्मत का मुखलिस वो है कि जो बहुत सारी नेकियां लेकर आए और कल कयामत के दिन अगर औरत पहाड़ पर रखी जाए तो अदब जाए, लेकिन लोगों के साथ मामला खराब किए होंगे, गरा बनी हादा, शतम हादा, इसको गाली दी थी, इसके पैसे दबा लिए थे, इसका ये किया था। तो हुकूक वाले अपने हुकूक को मांगने के लिए आएंगे और उनके हकों के बदले में इसकी नेकियां दी जाएगी। नेकियां देते देते लोगों का जितना दबाया हुआ था वो सारा दबाया हुआ उसके बदले में नेकियां देनी पड़ी, फिर भी हक अदा नहीं हुए, तो अब इसके गुनाह इस पर डाले जाएंगे और ये गुनाहों की वजह से जहन्नम में डाला जाएगा। ये मामला की खराबी इसको जहन्नम में ले लेंगे। मुआशरत की खराबी, रहन सहन नमाज रखने नहीं सीखा, हम बहुत अच्छे नमाजी, बहुत अच्छे हाजी और बहुत अच्छे हज और उमरा करने वाले, रहना नहीं सीखा तो गलत रहना हमें जहन्नम में ले जाएगा। हमारे नबी इस्लाम के जमाने में एक आदमी से कलमा नहीं पढ़ा जा रहा, तो हमारे नबी इस्लाम को इतना दी गई उससे कलमा नहीं पढ़ा जा रहा, तो जाकर पूछा कि क्या बात है, तो फरमाया उनकी अम्मा उनसे नाराज है। तो अम्मा से पूछा कि क्या बात है, क्यों बेटे से नाराज हो? तो फरमाया अम्मा ने कि मेरे बेटे की बुजुर्गी में मुझे कोई शक नहीं है कि मेरा बेटा बड़ा बुजुर्ग है। कितना वो बुजुर्ग, जब रात को तहज्जुद गुजार है, पूरी रात इबादत करता है और दिन में रोजे रखता है, इसकी रात की कीमती, इसका दिन की कीमती, तो फिर तुम्हें क्या शिकायत है? क्या बात, मेरी शिकायत यह है कि मेरे बेटे के जबान के सख्ती से मेरा दिल टूट गया है। कितना बड़ा बुजुर्ग है लेकिन उसके नकल मौत के वक्त कलमा नहीं पड़ा जाता है। क्या बात हो गई, क्या रहन सहन में रहना नहीं आ रहा है, क्या अम्मी के साथ कैसे रहना वो नहीं आया। आदमी कितना भी बड़ा बुजुर्ग हो जाए, कितना भी नमाज में कबूल हो जाए, अगर ये चीजें खराब है तो इसके बाद निकल जाएगी। किसी का पैसे जमा कर पा रहा है, ये मामला का ताल्लुक है। हमारे नबी इस्लाम के जमाने में जब कोई जनाजा आता तो हुजूर पूछते कि ये किसी के पैसे तो इसके जिम्मे नहीं है। लोग कहते कि नहीं, तो हुजूर नमाज पढ़ा देते, और अगर किसी के पैसे उनके जिम्मे हो तो अल्लाह के नबी इस्लाम ये फरमाते थे कि भाई मैं उसका कर्जा अदा करूंगा, और अगर हुजूर कर्जा ना अदा कर पाते तो लोगों से कहते, कई लोगों तुम्हें से कोई जिम्मेदारी लेता है, अगर कोई जिम्मेदारी ले तो बहुत अच्छा, और अगर कोई जिम्मेदारी नहीं लेता तो हुजूर ये फरमाते थे कि जाओ इसकी नमाज जनाजा तुम ही पढ़ लो, मैं नहीं पढ़ता हूँ। ये पैसे लोगों के लेकर मिला है, ये मामला की खराबी, माशरत की खराबी। माइला साहब कहते थे कि ये उम्मत दोबारा उस सतह पर आ जाए जिस सतह पर अल्लाह के नबी छोड़ कर गए। तो इन 5 शोबों के फजाइल हजरत शेख ज़करिया के पास उन्होंने लिखाए हैं। ये 5 शोबों का दिन इसमें है, ईमानियत का है, इबादत का है, इबादत में ईमान, नमाज, रोजा, जकात और हज, ये 5 शोबों का दिन। फिर मामला का दिन, हलाल के पैसे क्या है, हराम के पैसे क्या है, पड़ोसियों के हुकूक क्या है। फिर माशरत का दिन, अम्मी का क्या हक है, अब्बा का क्या हक है, भाई बहनों का क्या हक है, फिर आगरान वतन का क्या हक है, ये हुकूक समझाए। फिर अखलाकियात है, जब ये किताब घर में पढ़ी जाएगी ना तो ये हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे इन्हें पता चलेगा कि हमें कैसे जिंदगी गुजार। इसलिए हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं इसको सरसरी ना समझे, ये फजाइल की किताबें रोजों में घर में अहतमाम और अजमत से पढ़ी जाए तो ये हमारी नस्ल तैयार होगी, हमारी नस्ल। इसके लिए एक अमल अपनी जात से फिक्रमंद होकर अपने अपने घर को बनाना है, कि हमारे घर को बनाने के लिए हमारे फजाइल की किताबें रोज पढ़ी जाए। और फिर उसके बाद शहसिफात का वक्तन खवक्तन मुलाजरा, ये शहसिफात ये पूरा दीन नहीं है, लेकिन ये जब जब शहसिफात के मुलाजरे किए जाएंगे ना तो हमारा नन्ना मुन्ना बच्चा वो अल्लाह के हुकूक को और अल्लाह के बंदों के हुकूक को समझेगा। ये नन्ना मुन्ना बच्चा बोलेगा, 4 साल का बच्चा, अल्लाह से होता है और अल्लाह के अलावा से नहीं होता है, अल्लाह नबी के तरीके पर कामयाब करेंगे, उसके अलावा के तरीके वाला नाकाम होगा। कौन बोल रहा है? क्या नन्ना मुन्ना 4 साल का बच्चा बोल रहा है? हमारी नन्नी मुन्नी बच्ची बोलेगी कि अल्लाह के खजानों से नफा उठाने का रास्ता नमाज है, कि नमाज से अल्लाह पाक काम बनाते हैं। अरे भाई, कौन बोल रही है? ये 4 साल की मुन्नी बोल रही है, ये बचपन بچپن سے جب یہ بولے گی تو اس کا دل اللہ سے جڑے گا. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ صفات کے ساتھ گھروں کی تعلیم دی جائے. لیکن گھر کے اندر یہ تعلیم گھر کے وجود میں آئیں گے تو گھر مسلمان کے رہنے کی جگہ گھر اس کا بنے گا, گھر بنے گا. ہاں اس کے لیے ہم ہماری جو تعلیم ہو رہی ہے اللہ جزائے خیر دے تاکہ نہیں ہو رہی وہ فکر کریں کہ انشاءاللہ ہم یہ ضرورت سمجھ کر اپنے گھروں میں سے شروع کریں گے. کیا کرو گے انشاءاللہ؟ کون کون نیت کرتا ہے؟ اور یہ جو گھر کا ماحول بنانے کے لیے دوسرا جو ہمارا ضروری عمل ہے گھر کا ماحول بنانے کے لیے وہ ہماری گھر والی ہے. بھائی گھر والی کو گھر والی اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ گھر کی والی ہوتی ہے. ایک گھر والی اگر وہ نیک بن گئی, حضرت رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے ایک مرد کا بننا ایک مرد کا بننا ہے اور ایک عورت کا بننا ایک ایک نسل کا بننا ہے, ایک گھرانے کا بننا ہے ایک خاندان کا بننا ہے. یوں فرماتے تھے کہ ایک عورت کا بننا ایک نسل کا بننا ہے. ایک آدمی بن گیا بن گیا وہ ایک بنا ہے اور ایک عورت بن گئی وہ پوری نسل کو بنا دے گی. اس لیے کہ بچے جو بولتے ہیں وہ ماں کے اثر لیتے ہیں, ماں کا اثر, ماں کی بولی بولتے ہیں. ہم کسی کو پوچھتے ہیں تمہاری کون سی زبان بولتے ہو تم, تو ہم یہ نہیں پوچھتے کہ تمہاری پتر بھاشا کون سی, ہم یہ پوچھتے ہیں تمہاری ماتر بھاشا کون سی ہے. گجراتی میں بولتے ہیں, ہندی میں بولتے ہیں پتر بھاشا, مادری زبان یہ بولتے ہیں ماتر بھاشا. انگلش میں بولتے ہیں تمہاری مدر ٹنگ کون سی ہے, مدر ٹنگ. کوئی یہ نہیں پوچھتا تمہاری فادر ٹنگ کون سی ہے. فارسی میں پوچھتے ہیں تمہاری مادری زبان کون سی ہے, پیدری زبان کوئی نہیں پوچھتا. عربی میں پوچھتے ہیں تمہاری لغت الام, ماں کی بولی بولتے. کہ بچے ماں جیسے ہوگی بچے ایسے بنیں گے. ماں کو نیک بنانے کے لیے ماں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا, ہم اس کو نکاح کر کے لائے ہیں. وہ ہمارا جیون کا ساتھی ہے, جیون کا ساتھی. سب سے پہلا اللہ نے اس دنیا میں جو رشتہ بنایا ہے وہ میاں بیوی کا رشتہ بنایا ہے. اللہ پاک نے سب سے پہلے آدم اور حوا کو بنایا ہے. میاں بیوی کا رشتہ سب سے پہلا رشتہ ہے. کافی رشتے سب بات کے ہیں اور سب سے اخیر تک جو رشتہ باقی رہے گا جنت میں بھی ساتھ جائے گا وہ میاں بیوی کا جائے گا. ہم ماں کے ساتھ جنت میں نہیں جائیں گے, بیوی کے ساتھ جائیں گے, بیوی شوہر کے ساتھ جائے گی. سب سے پہلا رشتہ بھی میاں بیوی کا اور آخر رشتہ بھی میاں بیوی کا. وہ ہمارا جیون ساتھی ہے, اس کو اپنا ساتھی بنانا ہے, اس کو اپنے فکروں میں شریک کرنا ہے. اپنا جیون ساتھی ہے, اگر وہ ہماری فکروں میں شریک ہو گئی ہم اپنے گھر سے فارغ ہو جائیں گے. وہ انشاءاللہ ہمارے بچوں کو خودی پروان چڑھائے گی, ہمارے بچوں کو وہ دن بھر ان کے اسکول ان کا مدرسہ ان کے ساری چیزوں کی وہ فکر میں ہوں, اور خدا نہ کرے کوئی امید سے ہو جائیں تو ہم جاتے ہی اس کے ساتھ ایسے برے معاملہ کریں جو اس کا دل ہم توڑ کر رکھ دیتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا رہے. اس لیے اپنے گھر والوں کو اپنی فکر میں شریک ہمیں کرنا, اور شریک کرنے کے لیے ہم اس کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آ جائیں, اور اللہ موقع دے ان کو شہروں میں لے کر جائیں, اللہ کے راستوں میں جماعتوں میں لے کر جائیں. جب اللہ کے راستوں میں ہم ان کو لے کر جائیں گے نا ان کا ذہن لگڑا کھائے اور پلٹا کھائے گا. جیسے ہمارے مرد جماعتوں میں جاتے ہیں ان کی فکر بدلتی ہے, جب منصورت اللہ کے راستے میں جائے گی تو ان کی فکر بدلے گی, اور اگر ان کی فکر نہیں بدلی تو عورتیں جو ہے ان کے متعلق کہتا ہے کہ شیطان عورتوں کے راستے سے محنت کرتا ہے. عورتوں کے لیے آیا عبادت الشیاطین, وہ شیطان کی رسی ہیں اور جو وہ اسی کے راستے سے کھیلتا ہے. اس کے پیٹ میں بچہ بنتا ہے, اگر یہ پیٹ تقوی والا ہے تو بننے والا بچہ بھی متقی ہوگا, یہ حیا والا ہے تو بچہ حیا والا بنے گا, یہ پاکی والا ہے تو بچہ پاک بنے گا. جس ماں کے پیٹ میں بچہ بن رہا ہے اس ماں کی ماں گندا دیکھ رہی ہے, اس ماں کے کان غلط باتیں سن رہی ہے, اور اس ماں کی زبان گندا بول رہی ہے اور غلط دیکھا کو بچا رہی ہے. اب اس کے پیٹ میں بچنے والے بچے کے لیے ہم دعا کریں کہ اللہ اس کو جنید بغدادی بنا دے, تو بتاؤ جنید بغدادی بن جائے گا؟ یہ ڈائی ہے, ڈائی ماں کا پیٹ, یہ ڈائی ہے, ڈائی یہاں چھپائی ہو رہی ہے, یہ جیسی ڈائی ہوگی ایسا بچہ بنے گا. اس لیے اپنے گھر والوں کو اپنے فکروں میں شریک کرنا, بائی آرڈر نہیں, پیار محبت کے ساتھ اس کو ساتھی بناتے ہوئے. وہ ہمارا اپنا پوری زندگی چھوڑ کر ہمارے حوالے ہوئی ہے, ہو سکتا ہے دوسرے گھر کی خوشحالی چھوڑ کر ہمارے گھروں میں آئی ہے. ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر اس کے ساتھ پتہ نہیں کیا کچھ کر ڈالتے ہیں, تو پھر وہ زندگی کا وہ ساتھی نہیں بن پاتا جو ساتھی ہونا چاہیے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ وہ تمہارا لباس ہے, تم ان کا لباس ہو. وہ میرے لباس میں میرے سارے ہاتھ ڈھنک جائیں گے, کہ میرے لباس میں میرے سارے ہاتھ ڈھانک دیے. ہمارے وہاں خدا نہ کرے کبھی انہیں اس لیے سوچا ہے ہم لباس کو پھاڑ دیتے ہیں. بیوی کی پوری دنیا میں کیسے بجے ڈالتے ہیں, بیوی شوہر کی کیسے بجے ڈالتی ہے, پھر ایک ہفتے کے بعد پھر صلح ہوگی, لیکن کیسے تو بچے گی, ساروں نے ہمارے ہاتھ سمجھ لیے. اس لیے ہم اس پاکی کا معاشرے کو بنانے کے لیے اپنے لباس کو نہ پھاڑیں. ہو سکتا ہے اس کے بعد ذرا جھگڑا ہوا تو اس کا لباس نہ پھاڑا, पढ़ देता हूँ, ये भी मेरा लिबास है, मैं बीवी का लिबास हूँ, अपना लिबास न फाड़े। और कभी कुछ बात हो जाए तो आपस में प्यार मोहब्बत से हल हो जाए। हम लोगों को अपनी चर्चे कर डालते हैं, फिर सुलह हो जाएगी, लेकिन चर्चे तो चल पड़े हमारे, हमारी बंद मुट्ठी खुल गई, हमारी बंद मुट्ठी खुल गई कि हमारे घर के फिजा हमें बतानी है। इसके लिए इनके साथ प्यार अखलाक से पेश आना और बच्चों के लिए उनको सराहना कि तुम्हारा ऐसा नहीं तो हमारे साथ ही हमदर्दी करे, तो हमारे बच्चों को ऐसा पालेगी ऐसा पोसेगी उसको एक मवाद मिल जाएगा। लेकिन उस मवाद देने के लिए हम मर्दों को मुतफ़िक रहना पड़ेगा। हम मर्दों के पास जाएगा हम घर में जाकर करेंगे, हम मार्केट के बाद घर में जाकर करते हैं, रिश्तेदारों के बाद घर में जाकर करते हैं, कोई दोस्त मिला उसके बाद करते हैं, हमारे पास दीन की बात होगी हम घर में जाकर दीन की भी बात करेंगे, होगी नहीं तो कैसे बात करेंगे। इसके लिए दूसरी बात, अपने आप को दीनी फिक्र वाला बनाओ। दीनी फिक्र वाला हम कैसे बनाएंगे? रोजों में हमारी मस्जिद में मशवरा होता है, रोजाना हर मस्जिद में मशवरे का एक अमल होता है, उस मशवरे में अपने आप को बिठाओ। रोजाना हम जब मस्जिद और जमात में बैठेंगे तो हमारी फिक्र दीनी फिक्र बनेगी। हमें अपने मकाम पर माहौल बनाने के लिए पांच काम करने हैं, पांच काम। एक घर का माहौल बनाने की मैंने बात की, दूसरा अपनी जात को दीनी फिक्र वाला बनाने के लिए रोजाना अपनी मस्जिद के माहौल में मस्जिद और जमात बैठती है उसमें अपने आप को बिठाओ। किताबों में आता है कि आदमी जो बातें बोलता है जो बातें सुनता है उसकी विचारधारा वही बन जाती है, उसको सोचो विचार वही बनते हैं। कि सुनना एक काम करता है, सोचना एक काम करता है, बोलना एक काम करता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम लोगों को अल्लाह वाला बनाना चाहते थे तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि नबी जी लोगों को अल्लाह की अजमत सुनाओ, वरबिर नबी जी अब तुम पब्लिक को अल्लाह की अजमत सुनाओ। कि आदमी जब सुनता है तो उसकी सोच बदलती है। हम रोजाना अपनी मस्जिद के फिक्रों में बैठेंगे कि रोजाना अल्लाह के दीन में कामयाबी को और एक एक उम्मती के मुताबिक जो उनके मुताबिक जिम्मेदारियां हैं उसको हम सुनेंगे तो हमारे अंदर ये फिक्र बेदार रहेगी। बेदार खुद दीनदार बनना है और दीनदार बनते हुए पूरे उम्मत दीनदार बने उसकी फिक्र, ये दो जिम्मेदारियां हर ईमान वाले पर है। हर ईमान वाले पर यह जिम्मेदारी है कि खुद अपने जात से वो अल्लाह वाला बनता हुआ जिंदगी गुजारे। और दूसरी जिम्मेदारी ये है कि अब दुनिया में कोई नबी नहीं आएंगे, कयामत तक कोई नबी नहीं आएंगे। हमारे नबी ने फरमाया कोई नबूवत की बात करे तो वो कज़्ज़ाब और झूठा है, वो झूठा आदमी है। जब हमारे नबी आखिरी नबी उनके पास कोई नबी नहीं तो फिर ये जो दुनिया में फैली हुई उम्मत है उनकी कौन फिक्र करेंगे? क्या उनके फिक्र वो करेंगे जिनको अल्लाह ने समझ दी है, ये दीनदार लोग करेंगे। कि हम दूसरों की फिक्र करेंगे। हमारे नबी अलैहिस्सलाम के जमाने में जब हज के जमाने में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हज फरमाया सवा लाख का मजमा का सवा लाख, उस वजह से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने आखिर में जो खुतबा दिया उसमें ये फरमाया कि मैंने तुमको सारी बातें पहुंचा दी नहीं पहुंचा दी? तो लोगों ने कहा पहुंचा दी। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ उंगली की, अल्लाह तू गवाह रहना ये सब कह रहे हैं कि मैंने तेरी बातें सारी पहुंचा दी। फिर उस मजमे से कहा कि अब मैं तुम्हें ये जिम्मेदारी देता हूँ कि तुम लोग अपने बाद वालों को ये बातें पहुँचाना। मैं तुम्हारे जिम्मे ही काम करके जा रहा हूँ कि जो लोग यहाँ नहीं है उनकी तुम्हें फिक्र करनी है। जैसे एक बाप अपने बेटे की फिक्र करता है, बेटे अपने भाइयों की फिक्र करते हैं, खानदान खानदान वालों के लिए फिक्र करते हैं। अल्लाह ने हम सबको कलमे वाला भाई बनाया है। हम ये हर आदमी एक दूसरे की फिक्र करेंगे। हमारे नबी अलैहि सलाम ने फरमाया तुम में से कोई आदमी मोमिन नहीं हो सकता, उस वक्त तक मोमिन नहीं होगा जब तक अपने भाई के लिए वो चीज पसंद ना करे जो अपने लिए पसंद करता है। हम एक एक के लिए फिक्र करता, ये फिक्रों की बात रोजाना मस्जिद में होती है, ये जिम्मेदारियों की बात रोजाना मस्जिद में होती है। ये जितनी मस्जिद में बैठ कर मशवरे करने वाले हैं ऐसा नहीं है कि वो फारिग हैं, वो सब लोगों की तरह मशगूल हैं। तो फिर ये क्यों कर रहे हैं? ये जिम्मेदारी का एहसास है इसके लिए कर रहे हैं। तो हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं हम भी उसमें रोजन अपने आप को बिठाएं। भाई एक बैल कमजोर है, एक बैल बहुत मजबूत है, अब कमजोर बैल को क्या करेंगे? फिर कोई बात नहीं, जब हल चलाना जोतने के मौका है कमजोर बैल को मजबूत बैल के साथ चला दो तो मजबूत जब चलेगा तो कमजोर को भी घसीट लेगा। हम तो भाई कमजोर है, हमारी मस्जिद और जमात माशाल्लाह मजबूत है, हम उनके साथ बैठ जाएंगे उनके फिक्रों का असर हमारे अंदर आएगा और जब बहुत सारे काम करेंगे तो उसमें काम वाले हम भी बन जाएंगे। इसीलिए हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं हमारी दीनी फिक्र दीनी सोच लाते रहे। इसके लिए रोजाना मस्जिद और जमात रोजाना बैठती है पांच सात मिनट, उसके साथ अपने आप को बिठाओ। उसमें दो बातें होगी, एक बात को हमारी फिक्र ताजा रहेगी, हमारी सोच ताजा रहेगी, हम दीनी सोच और फिक्र वाले रहेंगे। और दूसरी बात क्या इस उम्मत से मुताल्लिक जो हमारी जिम्मेदारी है दीन की मेहनत की, हम किसी न किसी दर्जे में अपनी जिम्मेदारियों को पूरी करने वालों में शुमार होंगे। کہ بھائی اللہ کے نبی علیہ السلام کی امت کے لیے بیٹھا تھا, سوچنے بیٹھا تھا, اور نفع یہ ہوگا کہ ذمہ داری پوری کرنے والے ہوں گے اور اللہ کی طرف سے مدد کے مستحق ہو جائیں گے. ہمارے نبی علیہ السلام نے دعا کی, اللہم منصور من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اے اللہ تو اس کی مدد کر جو میرے دین کی مدد کرے. ہم اللہ کے دین کے مددگاروں میں شمار ہو رہے, اس لیے اپنے جگروں کو باقی رکھنے کے لیے ہم سب نیت کریں کہ روزانہ ان شاء اللہ مزیدار جماعت میں بیٹھیں گے. بھائی دیکھو گے ان شاء اللہ کون کون بیٹھے گا. تیسرا کام ہمارے اپنے ماحول کو بنانے کے لیے, ہماری مسجد میں ہم نے جو یہ کیا اس مسجد کا ماحول بنے اس کے لیے ہم کیا کریں گے. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں اپنے وقتوں میں سے ڈھائی گھنٹے کم سے کم, ڈھائی گھنٹے اڑھائی گھنٹے اپنے محلے میں یہ پاکیزہ فضا بنے اس کے لیے ہم بارش کریں. بھائی کیوں بارش کریں, کیوں بارش کریں؟ کہ اگر ہم نے فارغ نہیں کیا تو محلے میں جو بکھرے ہوئے لوگ ہیں ان کو یہ باتیں کون سمجھ آئے گا, ان کا مسجد سے تعلق کون جوڑے گا؟ اگر ہم نے یہ کہہ دیا کہ بھائی وہ جانے اور ان کا کام کرنا ایسا نہیں ہے, اس میں دو بڑے بڑے نقصان ہوں گے. بھائی کیا بڑے نقصان ہوں گے؟ ایک تو پہلا نقصان یہ ہوگا کہ اللہ پاک نے مجھے ان سب کے درمیان میں ذمہ دار بنا کر بھیجا ہے, میں انجان بن جاؤں گا تو میں اس عظیم ذمہ داری میں کوتاہی کرنے والا شمار ہوں گا. مجھے اپنے اللہ کی طرف سے ذمہ داری ملی ہے, مجھے اپنے نبی کی طرف سے ذمہ داری ملی ہے, میں اپنے باپ کے مرنے کے بعد اپنے سبے کے سگے بھائیوں کی فکر نہیں کرتا, سماج بھی مجھے برا کہتا ہے, رشتے دار بھی برا کہتے ہیں, اب ہمارے نبی ہمارے درمیان میں نہیں ہے, اس امت کی میں فکر نہیں کروں گا, کل قیامت کے دن میں اللہ کے نبی کے سامنے کیا چہرہ لے کر جاؤں گا, اللہ کے نبی علیہ السلام کو کیا چہرہ دکھاؤں گا. ہماری موجودگی میں ہمارے محلے میں لوگ بے نمازی ہوں, ہماری موجودگی میں ہمارے محلے میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہوں اور میں اس کی محنت کر سکتا ہوں, اس کے بعد بھی میں انجان بن گیا اور یہ سارا کا سارا وجود میں آ گیا, میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا, ہمارے نبی کو کیا منہ دکھاؤں گا. کہ سب سے پہلے ہم اللہ کے وہاں مجرم اٹھیں گے, اور دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ میں اپنے گھر کی فکر کر کے بیٹھا ہوں, لیکن اگر میرے محلے کی فکر میں نے نہیں کی تو یاد رکھیں جو محلے کی فضا بنے گی اس فضا سے میں نہیں بچ پاؤں گا, وہ گندی فضا میرے گھر کو بھی پکڑ لے گی. ارے بھائی محلے میں گندی پانی کی گٹر جا رہی تھی, اس کا پانی باہر نکلا, اس میں بدبو آ رہی ہے, تو بدبو جب آئے گی تو وہ محلے میں جائے گی, اس محلے میں میرا گھر ہے, وہ بدبو میرے گھر میں بھی آئے گی, وہ بدبو ایسا نہیں کہے گی یہ تو حضرت مولانا کا مکان ہے چلو میں ٹس لے کر نکل جاؤں, یہ تو مسجد جماعت کے ساتھی کا گھر ہے میں ٹن لے کر نکل جاؤں, یہ تو حضرت امیر صاحب کا مکان ہے میں ٹن لے کر نکل جاؤں, بدبو کچھ نہیں سمجھے گی, بدبو اس میں بھی بس جائے گی. اگر اللہ کا گھر مسجد ہوگی مسجد, وہ مسجد کو بھی نہیں بخشے گی, بدبو مسجد میں بھی گھس جائے گی. ہاں ماحول سب پر اثر کرتا ہے. ہمارے نبی علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک ایک بہت لمبا زمانہ ایسا گزرا کہ کوئی محنت کرنے والا نہیں آیا, تو اس کا اثر بیت اللہ پر ہوا, حالانکہ بیت اللہ اللہ پاک نے ہدایت کا مرکز بنایا, یہ ہدایت کا مرکز بیت اللہ ہے, لیکن اس کے اطراف میں اللہ کے غیر کی عبادت ہو رہی تھی, وہ بڑھتے بڑھتے اتنی بڑی کہ بیت اللہ بھی نہیں بچا اور بیت اللہ میں بھی اللہ کا غیر گھس گیا, تو میرا آپ کا گھر کیسے بچے گا؟ ہم مطمئن رہیں کہ بھائی جو ہو رہا ہے ہونے دو, جس محلے میں میرا مکان ہے اگر اس محلے میں کیچڑ ہے تو میرے بچے بھی چپل کے ساتھ کیچڑ گھر میں لے کر آئیں گے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ میرے گھر میں کیچڑ نہ ہے تو میں اپنے گھر کو جیسے صاف کرتا ہوں محلے کے کیچڑ کو بھی صاف کرنے کی فکر کروں. محلے میں گناہوں کا کیچڑ ہے, بےدینی کا کیچڑ ہے, اللہ کی نافرمانی کا کیچڑ ہے, کل وہ کیچڑ میرے گھر میں آئے گا. اس کے لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم کیا کریں گے, کہ ہمارے محلے کے دو بڑے عمل ہیں وہ کر رہے ہیں. کہ کیا دو بڑے عمل ہے؟ کہ ایک روزانہ اپنے وقت میں سے کچھ وقت فارغ کرو, اور فارغ کر کے ان محلے والوں کے پاس ڈور ٹو ڈور جاؤ, محنت کرو کہ ہر ایمان والے کا تعلق اللہ کے گھر سے ہو جائے, مسجد سے ہو جائے, ہر ایک ایک کا تعلق مسجد سے ہو جائے, اور اس کے لیے ہم وقت کہاں سے لائیں گے؟ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. اور بھائی ایسی بات نہیں ہے کہ اتنا ٹائم نہیں ہے, ہر ایک ایمان والے کے پاس وقت ہے. ہمیں اللہ نے 24 گھنٹے دیے ہیں دن میں 24 گھنٹے. عام طور سے ہمارے وہاں لوگ 8 گھنٹے کاروبار کرتے ہیں, 8 گھنٹے کاروبار, بھائی 10 گھنٹے سمجھ لو کہ 8-10 گھنٹے ہمارے کاروبار میں چلے جاتے ہیں, تو کاروبار میں سے ہم آپ سے 1 منٹ نہیں مانگتے, وہ 100% تم کاروبار کو ٹائم دے دو. بھائی 6 گھنٹے آدمی آرام کرتا ہے, چلو آرام کا ٹائم تم 100% آرام کو دے دو, ہم 1 منٹ اس میں سے نہیں مانگتے کہ 6 گھنٹے آرام کے ہو گئے, 6 گھنٹے ہمارے کاروبار کے ہو گئے, تو کتنے گھنٹے ہو گئے؟ 8 گھنٹے آرام کے اور 8 گھنٹے کمانے کے, تو 16 گھنٹے ہو گئے. 24 گھنٹے میں ابھی بھی 8 گھنٹے بچے ہیں, 8 گھنٹے, یہ 8 گھنٹے ہم کہاں لگاتے ہیں ہم پوچھیں؟ ہمارے وہ 8 گھنٹے روزانہ ضائع جا رہے ہیں, ضائع جا رہے ہیں. पैसों पर, चौराहों पर, होटलों पर, पेपर पढ़ने में, अखबार पढ़ने में, गपशप लगाने में हम सबके घंटों के घंटे चले जाते। रोज मिल गया साइकिल आने पर आधा घंटा एक चाय के कप में चला गया, मस्जिद में किसी के पास गपशप न लगे एक घंटा गपशप में चला गया। हम सबका रोजाना अवश्य जाय हो रहा है। हम यहाँ घंटे जो हमारे बच्चे हैं उसका सही फर्ज बनाए, उसमें से अपने बच्चों को वक्त दें, अपने घर वालों को वक्त दें, अपने वालिदैन को वक्त दें, अपने माँ बाप को वक्त दें, हम ये नहीं देते हैं। अल्लाह के नबी सलाम से पूछा गया कयामत कब आएगी, कयामत कब आएगी, तो फरमाया कयामत उस वक्त आएगी जब घर की बच्ची माँ बाप की नाफरमान हो जाए। बच्ची तो बच्चों का क्या होगा, जब वो तो होते ही ऐसे है। हम हर आदमी सोचे मेरे माँ बाप के लिए मेरे पास 10 मिनट है, 10 मिनट मैं अपने माँ बाप को 10 मिनट दे सकता हूँ, 10 मिनट। बच्चियां रोजाना फोन करती है खैरियत पूछती है, मैं अपनी माँ की खैरियत कब पूछता, ये मेरे माँ के लिए मेरे पास 10 मिनट नहीं है, आज मेरे पास 10 मिनट नहीं है, कल मेरे बच्चों के पास मेरे लिए 1 मिनट नहीं होगी। ये तो तकदीर है, मैंने जो किया है वो मुझे भुगतना है। कमा तजीन तो दानो, ओ भले आदमी तो जो करेगा तुझे भुगतना है। तेरे पास तेरे माँ के पास 10 मिनट नहीं है, कल तेरे बाप बेटे के पास तेरे लिए 10 सेकंड नहीं होंगे। 10 सेकंड अपने डायरी में इसको तो लिख लिए, 10 सेकंड नहीं होंगे। इस वक्त की तकलीफ बनाए माँ बाप, हमें हसरत से देखते रहते हैं मेरा बच्चा जा रहा है, यू खिड़की से देख रहे हैं मेरा बेटा सलाम भी नहीं कर रहा। जिस माँ बाप ने कुड़ कुड़ कर पूरी जिंदगी हम लोग हसियां भुला दी, हसियां भुला दी, बाप बुरा हो गया, लड़खड़ाता हो गया, उसके लिए मेरे पास 10 मिनट नहीं है। मेरी माँ ने अपना खून निकालकर छातियां चूस कर हमें सब दूध दे दिया, उस माँ के लिए मेरे पास 10 मिनट नहीं है, 10 मिनट। उस माँ की खैरियत पूछने के लिए नहीं है, बीवी बच्चों पर सब कुछ लगा रहा हूँ। माने 500 के बजाय 600 रुपए मांग लिए, वो माँ जो हमें आबाद करने के लिए अपना जेवर दे चुकी, अपने सब कुछ लगा चुकी, उस वो माँ 500 के बजाय 600 मांग ले, मेरी हंसी निकलती है। मैं उस माँ को जिंदा खाने को तैयार होता। हम अपने वक्त को बेतरतीब बनाएं, उस माँ को जाकर बैठें, माँ की खुशामद करें, अपने माँ के पैर पकड़ लें। हमारे नबी सलाम के मुताबिक आता है माँ पर भाव, अल्लाह के नबी फरमाते थे अल्लाह के नबी सलाम 6 साल के थे और दुनिया से माँ रुखसत हो गई थी, 6 साल के थे और अम्मा अम्मा के पेट में अल्लाह के नबी सलाम के और अब्बा रुखसत हो गए थे, तो हमेशा जिंदगी भर कहते थे कि काश मेरी माँ जिंदा होती और मैं ईशा की नमाज पढ़ता होता और मेरी अम्मा मुझे आवाज देती मोहम्मद, तो मैं नमाज पढ़कर अम्मा के पास जाता। उस माँ के पास हमारे पास निजाम नहीं है, उस माँ के लिए वक्त बनाए, उस बीवी के लिए वक्त बनाए, उन बच्चों को प्यार मोहब्बत से लेकर बैठे, अपने मजहब के माहौल को खराब न करें। और खुसूस ये घर में जाकर हम मोबाइल इस्तेमाल न करें, मोबाइल हम मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं और हम ये चाहते हैं हमारे बच्चे इस्तेमाल न करें। हम सारी चीजें घर में देखते हैं और हम ये चाहे मेरी बीवी उससे दूर रहे। जो चीज हम अपने घर वालों से करवाना चाहते हैं उसके हमें पाबंद बनना पड़ेगा। ये वक्तों को खाली निजाम बनाए, ये निजाम नहीं, तुम 1 घंटा मम्मी को दो, 1 घंटा बच्चों को दो, 2 घंटे हो गए 1 घंटा दोस्तों को दे दो, कोई बात नहीं, तुम्हारे काम करते 2 घंटे दो, 2.5 घंटे खारिज करो और 2.5 घंटे इस मस्जिद की जमात के साथ लगकर हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं ऐसी मुलाकातों का निजाम बनाओ कि मोहल्ले के अंदर रहने वाला कोई घर न छूटे और कोई घर का कोई फर्ज न छूटे। ऐसी जोरदार मेहनत का निजाम बनाओ कि भाई मान लो 200 मकान है, 12 आदमी मस्जिदार जमात में है, तो 12 आदमी की 3-3 की 4 जमातें बना लो और इनसे कहो ये 50 मकान तुम्हारे जुम्मे, ये 50 तुम्हारे जुम्मे, ये 50 तुम्हारे जुम्मे, ये 50 तुम्हारे जुम्मे। और ऐसी मुलाकातों का निजाम बनाओ कि हर 15 दिन में 100% मुसलमानों की मुलाकात हो जाए। 100% मुलाकात करो, 100% मुलाकात। ये बेचारा मुसलमान 15 दिन तक पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें दुनिया भर के दिमाग में भर कर लाता है, उसको 15 दिन में भी ऊपर दबाता है रसूल के बात नहीं सुनाई जाएगी। इस बेचारे का दिमाग अल्लाह के घर का असर ले लेगा और इसका दिमाग कबाड़ खाना बन जाएगा, पता नहीं क्या क्या भर लेगा। तो हमारे फरमाते हैं हर 15 दिन में इसकी मुलाकात का निजाम बने, ऐसा बनाओ। और मुश्किल बात अगर हमने 2.5 घंटे फारे किए हैं, 2.5 घंटे, तो मैं आधे घंटे में अगर मान लो एक मकान वाले की मुलाकात करता हूँ तो रोजाना 3 मकान की मान लो मुलाकात करूँ तो 15-45 मकान 15 दिन में पूरे हो जाएंगे आराम से। हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं क्या सा निजाम बनाओ कि हर 15 दिन में 100 फीसद घर के वाले मर्दों के सबकी मुलाकात होगा। और मुलाकात कैसे करें, क्या चलते चलते नहीं, बाजार में नहीं, कैसे कैसे किया जाए। हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं जिस घर के तुम्हें मुलाकात लेनी है उस घर में बैठ कर बात करो, उस घर वालों से कहो हमें तुमसे कुछ बात करनी, उस घर में बैठ कर बात करो। क्यों, ये घर एक जो होता है वो एक फर्द का नाम नहीं है, उस घर में जितने मेंबर हैं वो सारे मेंबरों का मजमुआ एक घर है। अगर 10 मेंबर हैं तो 10 मेंबर का मजमा ही घर है। अगर आपने एक आदमी से बाजार में बात कर ली, दुकान पर बात कर ली, उनके कारोबार में जाकर बात कर ली, वो आदमी तुमसे मुतफिक हो गया कि हाँ ये बातें सही है। लेकिन वो आदमी जब वो बातें घर में लेकर जाएगा तो हो सकता है उसको 9 घर के लोग साथ ना दे, क्योंकि वो 9 लोगों ने वो बातें नहीं सुनी है। तो हो सकता है कि वो जो चीज चाहता हो घर के 9 लोग उसका साथ ना दे। इसके लिए हम ये कहते हैं, हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कि जब बात की जाए तो घर के सारे मेंबर के सामने बात आए। उसके लिए उस घर वाले से कहो कि भाई हम आज आप आपके घर की मुलाकात की बारी है, हम आपके घर में बैठकर बात करना चाहते हैं। जब घर में बैठकर बात हो तो हम उन घर वालों से प्यार से मोहब्बत से, हमारा कोई चीज खो गई हम ढूंढने आए हैं, हमारी कोई चीज खो गई है हम ढूंढने आए हैं, ये हमारा भाई है, ये जाए ना हो जाए, ये बर्बाद ना हो जाए, इस तलब के साथ इस तरफ के साथ उससे हमें बात करें। अल्लाह हिम्मत है मस्जिद से उस आदमी का नाम लेकर बोरेगा पढ़कर समझाए अल्लाह इस्माइल भाई के घर पर जा रहे हैं, अल्लाह हमारे जाने से पहले उनके घर वालों के दिल को तू नरम कर दे, मुतवज्जह कर दे। यूं करके अल्लाह से दुआएं मांग कर जाए। हमारे बड़े बड़े पहले मस्जिदों से मांग कर जाते थे, अभी हमारे मांगने का माहौल खत्म हो गया। हम अल्लाह हिम्मत से बोरेगा पढ़कर जाए, दुआएं मांग कर जाए, अल्लाह फिर तो तेरे हाथ में है, अरे अल्लाह कोई इस भाई को मुतवज्जह कर दे और इसकी दुनिया भी अच्छी बन जाए, आखिरत भी अच्छी बन जाए, उन अमल पर इसको खड़ा कर ले। हम अल्लाह से मांग कर जाए और जब उनके घर में हम बैठ कर बात करें तो जो मर्द हो उनको सामने बिठाएं और उनसे फिर पूरे 6 नंबर के दायरे में हमारी बात हो, और जब बात पूरी हो जाए तो उसमें हम रियायत करें। एक घर की मस्तूरात अगर है तो वो भी हमारी बात सुन सके, इतना जोर से हम बोलें भाई घर के मस्तूरात की बात सुनेगी तो हम जो फिक्र मर्दों की बनाना चाहते हैं वो औरतों की भी बन जाएगी। लेकिन हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं हम किसी घर में जाकर ये नहीं कहेंगे मस्तूरात को कि आओ तुम भी हमारी बात सुनो। फितरों का जमाना है, मस्तूरात को बुलाया नहीं जाएगा। लेकिन औरतों की एक फितरत है, एक आदत है, वो क्या है, एक पराया मर्द हमारे किसी के घर में आता है तो वो औरत चुपके चुपके सुनती है कि वो हमारे मर्दों से क्या बात करता है, वो चुपके चुपके सुनती है, वो जरूर तुम्हारी बात सुनेगी और तुम्हारा पैगाम उन तक भी पहुंच जाएगा। जब वो मर्द को तुम किसी बात की बात करोगे तो फिर उस घर की औरतों का साथ इन मर्दों को मिल जाएगा, वरना मर्द बेचारे अकेले पड़ जाएंगे। इसलिए हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कि घरों में बैठ कर बात करो, जब तुम तफसील से बात करोगे तो अच्छी पूरी तफसील से बात करोगे, ये घर के सारे मर्दों का ध्यान भी नहीं बनेगा। उनसे पूरी बात करके कहो कि भाई ये मुबारक जिंदगी सीखने के लिए 4 महीने हैं, हम भी जा रहे हैं, आप भी चलो। लग रहा है कोई चलने की हिम्मत नहीं कर रहा तो वो इनकार करें, उसको इनकार ना करने दो। किसी मुसलमान को भलाई से इनकार नहीं करवाना चाहिए, उसके इनकार करने से पहले दो अच्छा अगर चलने की हिम्मत नहीं हुई तो चिल्ला कर लो, अगर इससे भी हिम्मत नहीं वह बात है 3 दिन कर लो, अगर 3 दिन की हिम्मत नहीं कर रहा देखो हमारे मस्जिद में ये काम हो रहा है तो सीनियर कर लो कि उसको किसी ना किसी अमल पर हम हमारा करें। इस तरह अगर किया गया तो बेचारा मुसलमान उसका घर मस्जिद वाला बन जाएगा। अगर ये तरतीब पर घर पर भी मेहनत हुई ना तो इंशाल्लाह तमाम ईमान वालों के घरों का ताल्लुक अल्लाह के घर से हो जाएगा, और अगर नहीं हुआ तो ये आहिस्ता आहिस्ता मस्जिद से कर जाएंगे, मस्जिद के घरों से कर जाएंगे, और कर जाए ना तो इनका जहन भी मुर्तद हो जाएगा। उलमा ने लिखा आदमी पहले मुर्तद नहीं होता, पहले जहन मुर्तद होता है कि इस्लाम की बातों पर उसको बांधे आ जाते हैं कि ये क्यों है ऐसा कर। इसलिए एक एक को यहाँ जोड़ना है। हम लोग तंजानिया में 4 महीने में थे तो हम घर पर भी मुलाकात में ही निकले, वहाँ 90% इस्लाम में लोग थे, जब हम गए तो 60% रह गए, बहुत मुर्तद हो गए। तो जब हम इस तरह गेस्टों में निकले तो गेस्ट घर वालों को हमने बुलाया मस्जिद में आए, तो दूसरी मरतबा इमाम साहब जो थे उनको हमने मुतकलीम बनाया कि आप बात करो और उनको बुलाओ मस्जिद में, तो जब वो उसकी दावत पर आ गया, हम लोगों की दावत पर आ गया, इमाम साहब एक चीख मारी और कहने लगा मारे ना ये जो घर घर की टूटर पर मुलाकातों का निजाम आप हमको समझा रहे हैं, अगर पहले से हमारे पास होता ना तो हमारे यहाँ का एक आदमी भी मुर्तद ना होता, सबका ताल्लुक मस्जिद से होता, ये हम मेहनत हमारे पास है। इसलिए आप लोग अपने मोहल्ले की फिजा बनाने के लिए 2.5 घंटे दो, ये अल्लाह के दिन की बड़ी नुसरत हो जाएगी। अल्लाह हमसे कुरान में कह रहे हैं अरे ईमान वालों तुम अल्लाह के दिन के मददगार बनो, या जो लदीन आमनो कुन अंसार अल्लाह, ए ईमान वालों अल्लाह के दिन के मददगार बनो। जब तुम ये अमल करोगे ना तो अल्लाह के मददगार हो जाओगे, और जब अल्लाह के मददगार हो जाओगे तो अल्लाह का वादा है जो हमारे दिन की मदद करेगा, बस अल्लाह कह रहे हैं हम भी उसकी मदद करेंगे, अल्लाह की मदद में हम आ जाएंगे। इसलिए सब नियत करो कि रोजाना मशवरे में लेकर जाएंगे, और इस तरतीब से कि मेरा रोजाना 2.5 घंटे लगे, घड़ी देख कर मैं वक्त लगाऊं, अल्लाह के घर को टाइम दूं, तो अल्लाह के वहां बड़ी कमाई करके जाऊंगा। हमारे तो यहाँ थोड़ा कितना वक्त लगेगा, 1.5 घंटा 1 घंटा, लेकिन हमारी तरतीब पर वो घर वाले जितने दीन पर आएंगे कल कयामत के दिन उस घर वालों का दीन हमारे नामा अमल में लिखा जाएगा। उस घर का उलमा, उस घर में हबीबी, उस घर की नमाजें, उस बच्चों की दीनदारी, उन औरतों की दीनदारी, क्योंकि मैं उसका जरिया बना हूँ। मैंने जाकर 5 मिनट बात की, 10 मिनट बात की, मेरी बड़ी कमाई हो गई कि हमारा तो आधा घंटा लगा, लेकिन उसमें जो आदमी मुतवज्जे हुआ वो बहुत काम करने वाला हो गया, मेरी बड़ी कमाई हो गई। किताबों में आता है बाज बात सुनने वाले बात करने वाले से आगे निकल जाते हैं, बाज बात सुनने वाले बात करने वाले से आगे निकल जाते हैं, ऐसे हीरे तैयार होते हैं। हाँ, ये बात करने वाले को हजरत उमर रजी अल्लाह तआला पर उनकी बहन ने मेहनत की, बहन ने तमाचे खाए थे, लेकिन बहन को बड़ी पता थी कि हजरत उमर इतने बड़े बन जाएंगे, 10 साल इस्लाम के खिलाफत के 10 साल, और इस्लाम को इतना फैलाया, इतना फैलाया, किताबों में आता है साहबा फरमाते हैं 2 जुमा के बीच में हम एक मुल्क पता कर लेते थे, एक इलाका पता करते थे। इतने बहन को नहीं पता था जिस दिन जमात खाए थे कि मेरा भाई इतना आगे बढ़ जाएगा, कल कयामत के दिन वो सारी हजरत उमर की मेहनत किसके हिस्से में जाएगी? अरे बोलो भाई, किसके हिस्से में जाएगी? क्या बहन के हिस्से में जाएगी कि वो दरिया बन गई, दरिया बन जाना है। हम लोग वहां पे प्राइवेट में तुम्हारी तरीके में सुनाने लगे, तो मैं तो नाश्ता कूदता था, तखत पर डांस करता था, तो मेरा दोस्त था बंगाली, तो वो जबरदस्ती मुझे पकड़ कर लाता था, तो हम बात भी नहीं सुनते थे। एक मरतबा वो नमाज पढ़ा था तो हमने उसकी नमाज देखी तो हमको डर गए, ये बंगाली इतनी अच्छी नमाज पढ़ता है, अब वो बात करने आएगा तो उसकी बात सुनेंगे, तो वो बात करके तो चला गया। तब मैं ईरान जाने वाला था अपना नाचने का प्रोग्राम करने के लिए, उसका सर्टिफिकेट पता नहीं क्या लेने के लिए, तो 10 दिन की छुट्टियाँ थी, स्टूडेंट की मेहनत वो बच्चे ने मेरा जहन बनाया, जबरदस्ती 3 दिन ले गया, वो 3 दिन क्या ले गया, वो ऐसे 3 दिन हुए उनकी फिक्र बदल गई, फिर वो पढ़ने गए, मौलवी साहब बने, अब पूरी दुनिया में पता नहीं कितना काम कर रहे हैं, तो उनको तो हम सब जानते हैं, बंगाली को कौन जानता है, लेकिन मौलाना कितना भी कर रहे हैं किसके अकाउंट में जाएगा ये सारा का सारा? अरे बोलो किसके खाते में जाएगा? उन जो कुर्सी पर बैठने वाले से गला पूछेंगे, बता कुर्सी पर क्यों बैठा था, लेकिन कुर्सी पर जो बैठने वाला है वो जिसने जिसकी मेहनत से कुर्सी पर बैठने वाला तैयार हुआ, उसको अल्लाह नहीं पूछेंगे कि वो क्यों बैठा था, उसको तो 100% अल्लाह देंगे। लोगों को लगाने को तुम मामूली ना समझो, कि कल कयामत के दिन हर आदमी से अल्लाह पूछेगा, बता तू क्या लाया है, कितना लाया है, अपनी जात का तो ये पूछेंगे कि नमाज कैसे लाया, कुरान कैसे, लेकिन ये भाई इसको नमाज नहीं आती, मैं समझा कर मस्जिद में ले आया, वो कह रहा मुझे नमाज पढ़ना नहीं आती, मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरे पास खड़ा हो जा और मैं जैसे करूँ ऐसे कर, वो क्यों हमारी तरह नमाज पढ़ने लगा, वो कच्चा कच्चा पढ़ रहा है, उसको क्लियर भी नहीं आती, नमाज भी नहीं आती। हजरत फरमाते थे वो कच्चा पड़ेगा तो उसकी कच्ची नमाज उसके नामाए अमल में कच्ची, लेकिन उसकी कच्ची नमाज तुम्हारे नामाए अमल में पक्की। अरे क्यों ऐसा हो गया? इसलिए हो गया कि तुम तो उसको पक्का बनाने के लिए चले आए थे, तुम्हारी थोड़ी उसके लिए थी कच्चा बनाने की, तुम्हारी तो पक्का बनाने के लिए थी। तो ऐसी हजारों पक्की नमाजें हमारे नामाए अमल में इतना वजन लाएगी कि तुम अंदाजा नहीं कर सकते। इसलिए शैतान को अदावत है दावत से, शैतान को अदावत है किसे बोलो, कि अपना अपना करके मर जाए कोई बात नहीं, ये हजारों लोगों को अपने झंडे के नीचे लेकर नहीं जाना चाहिए। हजारों लोग मगन अब्दुल गनी साहब उनकी अहमदाबाद के थे चले गए, ये पूरा अहमदाबाद, और कादी साहब भी आपके अहमदाबाद के थे, ये पूरा गुजरात, और पता नहीं कितना कयामत के उनके झंडे के नीचे होगा कोई जानता भी नहीं। उसी जमाने के कुछ और भी उम्र वाले थे वो भी मर गए, लेकिन उनका बदला और इनका बदला क्या बराबर हो जाएगा? ऐसी दोनों का बदला बराबर नहीं होगा। हम भी हम अकेले नहीं मरेंगे, मरना वर्षा फरमा देते हम बांझ नहीं मरेंगे। कैसे मरे भाई? बांझ के औरत को कहते हैं, बांझ ऐसे औरत को कहते हैं जिससे कोई बच्चे ना हो, अकेली मर जाए, अकेली की और अकेली मर गई, तो हम बांझ नहीं मरेंगे। कभी कैसे मरेंगे? कल लोगों को कमा कर मरेंगे, लोगों को कमा कर, हमारे झंडे के नीचे कयामत के दिन लाखों लोग होने चाहिए, लाखों हजारों लोग। हमने कष्ट किए हैं, हम 3 दिन जाकर हमने देहातों में मेहनत की है, हमने 2.5 घंटे लगाए हैं, हम दूसरे कष्टों के जरिए से जाकर हमने बंजर मस्जिदों को आबाद किया है, हम चिल्ले आसाम में गए, बंगाल गए, ओडिशा गए, मणिपुर गए, और हम जहाँ सूरज उगता है वहां भी गए और सूरज डूबता था वहां भी गए, हमने जान लगाई है। अल्लाह इसको हमारा आखिरत का जखीरा बनाएगा, कल कयामत के दिन ये सारा हमारे झंडे के नीचे हो। इसके लिए मेहनत का मैदान चाहिए जिंदगी है, इसलिए सुस्ती ना करें, लोगों को मुतवज्जे करने में सुस्ती ना करें। हमने घर के एक आदमी को मुतफर किया, उसका बात समझ में आ गई, उसने बच्चे को मौली साहब बनाया, हाफिज साहब बनाया, पता नहीं क्या क्या बनाया, मेरा तो कोई बच्चा हाफिज नहीं, मेरा कोई बच्चा मौली साहब नहीं, लेकिन इंसानों के बच्चे मेरे खाते में कयामत के दिन। इसलिए शैतान कोशिश करता है कि ये 2.5 घंटे में लगाए, ये बच्चों में मेहनत ना करें, ताकि न रहे बांस और न बजे। अरे बोलो न रहे बांस और न बजे बांस। हमें क्या करना है? कहते बांस भी लाएंगे, बांसुरी बनाएंगे और पूरी दुनिया में बांसुरी बजाएंगे। तो सब नियत करो, इंशाल्लाह हम भी बांसुरी बजाएंगे। कौन कौन नियत करता है? हम घड़ी देकर 2.5 घंटे लगाएंगे, जाएंगे। और दूसरा काम हफ्ते में एक मरतबा अपने मोहल्ले में करना है कि ये स्टेटिंग करा दी तुमने जहनबाजी की, पूरे मोहल्ले वालों का ये जहन बने, इसके लिए हफ्ते में एक मरतबा गश्त करो। गश्त करके जिस दिन गश्त का अमल हो उस दिन पूरे मोहल्ले वालों को जमा करो और पूरे मोहल्ले वालों के सामने बात करो कि भाई ये हमारी इतनी बड़ी जरूरत की चीज है, अगर ये हमारे मोहल्ले में नहीं हुआ हमारे घर का मोहल्लों का दरवाजा निकल जाएगा। उसकी फिक्र से उनसे बात करो कि मोहल्ले वालों को इसकी फिक्र आ जाए। इसके लिए हफ्ते में एक मरतबा गश्त, अपने मोहल्ले का एक मरतबा गश्त और एक अपने पड़ोस के मोहल्ले का एक मरतबा गश्त। या अपने गश्त के जरिए से अपने मोहल्ले में फिक्र जिंदा होगी, अगर अपने मोहल्ले में फिक्र जिंदा हो गई तो इंशाल्लाह मोहल्ले की बेजगी भारी हो जाएंगे। अपने घर से भारी हो गए, अपने मस्जिद का माहौल बनाया, अपने मोहल्ले का माहौल बनाया, अब अतराफ का मोहल्ला, अब अतराफ के मोहल्ले में अगर मेहनत नहीं हुई तो वहां की बेजगी यहाँ आएगी। तो हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कि दूसरे गश्त के जरिए से अपने अतराफ के मोहल्ले में मेहनत करो ताकि जो चीज हम अपने लिए पसंद करते हैं हमारे अतराफ के मोहल्ले से भी वो चीज खत्म हो जाए बेजगी और वहां भी जिनके फिक्र शुरू हो जाए। तो हफ्ते में दो गश्त करो, एक अपनी मस्जिद का गश्त करो और एक अपने पड़ोस की मस्जिदों का जो हमें मशवरे से दी जाए वहां गश्त करो, ताकि अगर अगर हमारे अंदर ये फिक्र है उस मोहल्ले वालों में फिक्र नहीं तो हम वहां जाकर उनके फिक्र करें। हमारे नबी अलैहि सलातो सलाम पूरे मदीने वालों की फिक्र करते थे, पूरे मक्के वालों की फिक्र करते थे कि ताकि जो चीज अल्लाह के नबी अलैहि सलाम को अल्लाह ने दी है वो सबको मिल जाए। हमारे नबी अलैहि सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया ऐ नबी जी अपनी फिक्र करो, ओ अल्फुसकुम अपने घर वालों की करो, वअहलीकुम नार फिर फरमाया अपने जमीन की करो, वअंदे वशीरत कला प्रबीन फिर फरमाया या मक्के वालों की फिक्र करो, मक्के वालों की वलकुम मेरा उम्मल कुरा मक्के वालों की फिक्र करो, फिर फरमाया मक्के के अतराफ में जो रहते हैं उनकी भी फिक्र करो, वमन हौला अतराफ वालों की भी फिक्र करो। तो हम मक्के की सारी गलियों की फिक्र की, हम अपने 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 शहर की सारी गलियों की फिक्र करें। कैसे करेंगे? क्या दूसरे गश्त के जरिए से करेंगे। हमको मशवरे से जो गश्त मिले वहां जाना और उनको उनको लाना जैसे हमारे नबी आए हैं। थोड़े दिन ये थकना है कि अगर ये थोड़े दिन थक गए ना इंशाल्लाह कब्र में सुकून से सो सकेंगे, मजे से सो सकेंगे। जिस दिन हमारा जनाजा उठेगा तो लोग रोएंगे और इंशाल्लाह हंसते हुए जाएंगे। हम कैसे जाएंगे बोलो? लोग कहेंगे फलाने का जनाजा जा रहा है। अरे भाई जनाजा नहीं है, ये उसकी बारात है, बारात फरिश्ते लेने आए इस दूल्हे को। अभी असल में दूल्हे आएंगे ना उसके साथ लोग आते हैं। किताबों में आता है जब अल्लाह के दिन की मेहनत करने वालों के दूल्हे उठते अल्लाह को राजी करके अल्लाह 500 फरिश्ते आसमान से भेजते हैं, 500 यूं लाइन लगा देते हैं दाएं बाएं और बीच में से जनाजा जाता है और फरिश्ते उसको गुसल देते हैं, फरिश्ते उसको कफन पहनाते हैं और जब उसका जनाजा चलता है ना तो फरिश्ते खुशखबरी सुनाते हैं या तुहन नफ्सुल मुतमईना ओ थकी मांगे रूह तूने बहुत कष्ट है, तू बहुत थका है, तूने लोगों के बहुत कर्जी कसी भी सुनी है, चल चल तेरा अल्लाह तेरा इंतजार कर रहा है। तेरा अल्लाह तुझसे बहुत राजी है, तेरा अल्लाह तेरा इंतजार कर रहा है, फिर हमारा जनाजा जो मजे से जाएगा, लोग रोते होंगे हम हंसते हुए जाएंगे, हमारे अल्लाह से मिलने हम जाएंगे। कहाँ जाएंगे बोलो? हमारे अल्लाह से मिलने हम जाएंगे। हमारी मौत हमारा झटका नहीं है, हम मौत का इंतजार कर रहे हैं, हमें हमारे मौत हमारे अल्लाह से मिला देगी, हमारी मौत हमारे अल्लाह से आएगी, तो हमें मौत का इंतजार होगा, मौत का डर नहीं होगा। इसलिए सब ये करो कि इंशाल्लाह हमारा जनाजा नहीं, हमारी तो इंशाल्लाह बारात उड़ेगी। जनाजे की शक्ल में बोलो क्या उड़ेगी? बोलो बारात। लोग हमें रुखसत करेंगे हमारे अल्लाह के पास और हम हंसी हंसी अल्लाह के पास जाएंगे। तो कब होगा? जब अल्लाह का काम करके जाएंगे। इसलिए सब ये करो कि दोनों गश्तों को पाबंदी से करेंगे। कौन कौन नियत करता है और आखिरी काम क्या करना है? पांचवा काम जो करना है वो करना है अपने देहातों की फिक्र। इसलिए तुम अपने मोहल्लों में गश्त करोगे, अपने तरफ से करोगे, देहातों में कौन लेगा? ये देहात में जो मुसलमान करता है वो हमारा सही है। हमारे नबी अलैहि सलाम ने अपने तरफ वालों की ऐसी फिक्र की कि मदीना मुनव्वरा के जमाने में हमारे नबी अलैहि सलाम ने 150 जमातें बनाई। भाई सच बताओ आज के साल में कितनी बार चिल्ला देता है? अरे बोलो कितनी बार देता है? एक बार 140 दिन देगा या एक बार 140 दिन देगा? अल्लाह के नबी सलाम ने मक्के के मदीना मुनव्वरा में 10 साल गुजारे, तो भाई 10 सफर होने चाहिए, लेकिन अल्लाह के नबी सलाम ने सहाबा के 150 सफर करवाए, 150 अतराफ वालों के फिक्र के लिए। कितने सफर करवाए बोलो? 150 सफर 10 साल में करवा दिए। और उन 150 सफरों में हमारे नबी अलैहि सलाम खुद अपनी जात से 25 सफरों में खुद गए। कितने सफरों में बोलो? 25 सफर में हमारे नबी खुद तशरीफ ले गए और बाकी जहां खुद हुजूर नहीं जा सकते थे वहां जमाते बना बना कर भेजी है। जमा तो बना बना कर रही थी, उसके ये हुआ कि अतराफ में सारी जगह पर फिजा बन गई, अतराफ के सारे देहातों पर फिजा बन गई। हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं हम तीन तीन दिन की जमातों के वजह से हमारे जिले के देहातों को हम छान मारे, कोई देहात न छूटे। आपके वहाँ 100 देहात करीबन बंजर हैं और 100 मस्जिदें हैं, अगर एक एक मस्जिद वाले एक देहात को अगर उठा लें तो आइंदा साल तक कोई देहात ऐसा नहीं रहेगा जिससे जो बंजर रहे। इसके लिए क्या शक्ल है? इसके लिए शक्ल ये हमारे जिम्मेदार के तीन दिन लगे। जब एक जिम्मेदार के तीन दिन लगेंगे ना, तीन बड़े बड़े नफे वजूद में आ जाते हैं। अरे भाई क्या नफे वजूद में आते हैं? पहला नफा ये वजूद में आएगा कि जो चिल्ला गया था ना ये जिम्मेदार, चढ़ने में गया था, जो ईमान बनाकर आया था, घर पर रहकर जो कमजोर पड़ा है, ये तीन दिन जाएगा तो इसको तकलीफ पहले तो मिलेगी, इसकी बैटरी चार्ज हो जाएगी, इसकी फिक्र उजागर हो जाएगी, इसके अंदर ताकत आ जाएगी। दूसरा क्या फायदा होगा कि जब ये जाएगा तो इसके पास 15 साथियों को मोहल्ले वालों को लेकर गया, तो ये जो उसके पास फिक्र है मोहल्ले के 15 जवानों में मुंतकिल करने का ये जरिया बनेगा। ये चिराग से चिराग मिलता है, एक चिराग से दूसरा चिराग। तो हमारे नबी को अल्लाह ने कहा कि नबी जी आप तो चिराग हैं, सिराज मुनीरा, आप चिराग हैं, एक सूरज से दूसरा सूरज नहीं, एक चांद से दूसरा चांद नहीं, लेकिन एक चिराग से दूसरा चिराग। कि मेरे पास जो है रोशनी है मैं मोहल्ले के 15 जवानों को दूंगा। ये 15 जवान कौन है? ये 15 जवान नहीं है, ये कौन है? ये 15 खानदान है, 15 जहाने हैं, 15 नस्लें हैं, 15 कबीले हैं। अगर इन 15 बच्चों को बात समझ में आ गई, ये 15 नस्लों को संभाल लेंगे तो 15 को समझाने का मौका मिलेगा तीन दिन। तीसरा क्या नफा होगा? क्या जिस गाँव में हम जाएंगे खाने थोड़ी जा रहे हैं, पिकनिक पर थोड़ी जा रहे हैं, तो चैन से बैठेंगे भी नहीं, चैन से बैठने भी नहीं देंगे। तो वहां जाकर जाकर जमात बनाएंगे तीन दिन की, चिल्ले की, चार महीने की, वहां मस्जिद पर जमात बनाएंगे, ये वहां चैन से बैठेंगे भी नहीं, चैन से बैठने भी नहीं देंगे। तो हमारे जब तीन दिन वहां लगेंगे तो जो चिराग की रोशनी हम लेकर गए उस गाँव में भी चिराग जलाएंगे, तो उस गाँव वालों को भी हम फिक्र बनाएंगे, वहां से लगकर जमात बनाकर अपनी बस्ती में लेकर आएंगे, तो ये चिराग वहां जला, वहां से वो लोग हमारी बस्ती में आए, एक एक माहौल उससे बनेगा। इसलिए शैतान क्या करता है? शैतान की मेहनत ये होती है कि हमारे जिम्मेदार क्या ना लगाए, बोलो अरे बोलो क्या ना लगाए, तीन दिन में लगाए, ये सब कुछ करे तीन दिन में लगाए, इसलिए जब तीन दिन लगाएगा तो ये तो ताजा हो जाएगा, दोबारा ताजगी इसके अंदर आ जाएगी। ये तीन दिन लगाएगा तो मोहल्लों के कितने जवानों को ही तो उजागर कर देगा, और ये तीन दिन लगाएगा तो अतराफ के कितने देहातों में ये तो फिक्र जिंदा कर देगा। तो ऐसा करो कि जिम्मेदारी ही तीन दिन में लगे हैं, ताकि क्या ना हो, न रहे बांस, अरे बोलो न रहे बांस और न बजे बांसुरी। इसलिए शैतान कोशिश करता है कि महीने के तीन दिन जिम्मेदार के न लगे हैं, इसलिए अगर ये लग गया ये तो हजारों को लगाएगा। ये अकेला नहीं है, हम तो अकेले ही चले थे जाने दे मंदिर, हम तो अकेले ही चले थे जाने दे मंदिर, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। अकेले ही चले थे लेकिन अल्लाह के नबी अकेले गए और जब दुनिया से पर्दा किया तो 1,25,000 छोड़ कर गए। कितने बोलो? हम अकेले नहीं, अकेले ही चले हैं जाने के मंदिर, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया, पूरे टोले के टोलों को लेकर जाएंगे। तो तीन दिन हमें लग रहे हैं ताकि अल्लाह हमें जरिया बना दे। इसलिए सब ये करो कि महीने का हफ्ता तय करके तीन दिन लगाऊंगा और अपने साथ अपने मोहल्ले के जवानों को लेकर जाऊंगा, और जिस बस्ती में जा रहा हूँ वहां से चलकर नकद जमात लेकर आऊंगा। भाई नियत करते हो? कौन कौन नियत करता है? ये पाबंदी से रोजा लगाएंगे। हमारा जिला पूरा हो गया, मस्जिद पूरी हो गई, मोहल्ला पूरा हो गया, अतराफ के मोहल्ले पूरे हो गए, हमारे अतराफ का जिला पूरा हो गया, फिर पूरा सूबा, फिर पूरा मुल्क और पूरी दुनिया। तो उसके लिए अल्लाह ने हमको चिल्ले दिए हैं, उसके लिए अल्लाह ने हमको 4-4 महीने दिए हैं। कम चिल्ले जाएंगे अपने सूबे में फिरेंगे, मुल्क में फिरेंगे, अल्लाह ने हमको 4-4 महीने दिए हैं, अपने मुल्क में भी जाएंगे, पूरी दुनिया में जाएंगे। तो इससे इंशाल्लाह पूरी दुनिया में वायरिंग हो जाएगा, अल्लाह पूरी दुनिया में काम हमसे ले लेगा। इसलिए सब ये करो कि सालाना इंशाल्लाह हम चिल्ला 4 महीने भी लगाएंगे। भाई लगाओगे कि कब तक करते रहेंगे? अरे भाई कब तक करते रहेंगे? करते करते मरना है, बोलो करते करते मरना है, और मरते मरते करना है। अल्लाह हमें कबूल कर ले कि हम अल्लाह से मांगते रहेंगे। क्यों? कि अल्लाह को हमारी कोई जरूरत नहीं, अल्लाह को तो बहुत लोग मिल जाएंगे। 1400 साल से कमी हो रही है, बोलो कितने साल से? 1400 साल से अल्लाह को 1400 साल से करने वाले मिल गए हैं, तो कयामत तक चलेगी तो अल्लाह को कयामत तक करने वाले मिल जाएंगे। लेकिन अगर मेरा वपराश नहीं हुआ, मेरा इस्तेमाल नहीं हुआ, मैं रह जाऊंगा, अल्लाह ये काम किसी न किसी से ले लेगा, तो अल्लाह मुझे इस्तेमाल कर ले, इसलिए अपने आप को चिपकाए रखूंगा। कैसे रखूंगा बोलो? जो भी हाल आ जाए किसी हल में भी नहीं छोड़ूंगा। ये ट्रेन में मैं बैठा हूँ तब रखी, उसमें तो उतरूंगा नहीं। अरे भाई ट्रेन जा रही है बम्बई, उससे किसी आदमी को उल्टी हो रही है लेकिन गाड़ी में बैठा है, तो जब गाड़ी बम्बई पहुंचेगी तो उल्टी करने वाला भी क्या पहुंचेगा? अरे बोलो भाई कहाँ पहुंचेगा? एक आदमी को पेट में दर्द हो रहा है लेकिन ट्रेन में से नहीं उतर बैठा हुआ है, जब ट्रेन बंबई पहुंचेगी तो पेट में दर्द वाला आदमी कौन कहाँ पहुंचेगा? कोई अंदर ट्रेन में किसी से झगड़ा हो गया, कोई झगड़ते बैठा रहा, जब ट्रेन बंबई पहुंचेगी तो झगड़ने वाला कहाँ पहुंचेगा? अरे बोलो जरा बम्बई। लेकिन उसने कहा नहीं मेरे पेट में दर्द हो रहा है, स्टेशन पर उतर गया तो ट्रेन पर जाएगी बम्बई। और वो भाई कहाँ रहेंगे? स्टेशन पर। मेरे तो सर में दर्द हो रहा है, वो उतर गया ट्रेन चली गई। तो आप बताओ ट्रेन तो पहुंचेगी मंजिल पर और सर का दर्द वाला कहाँ रहेगा? तो प्लेटफॉर्म पर। वो भी झगड़ा हो गया और उतर गया ट्रेन से, तो ट्रेन पर जाएगी वहाँ और वो रहेगा वहीं का वहीं। तो हम तो झगड़ते झगड़ते भी ट्रेन से क्या नहीं करेंगे बोलो? उतरेंगे नहीं। जब ये ट्रेन दीन की मेहनत अल्लाह को बंदों को दीनदार बनाती है, इस ट्रेन से हम नहीं उतरेंगे तो इंशाल्लाह झगड़ते झगड़ते भी कहाँ पहुंच जाएंगे बोलो? सर में दर्द करते करते भी मंजिल पर। जब ये ट्रेन इंशाल्लाह मंजिल पर पहुंचेगी हम तब भी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। इसलिए सब नियत करो इंशाल्लाह ट्रेन से उतरेंगे नहीं। इसके ट्रेन क्या है? रोजाना का मशवरा, रोजाना की मुलाकातें, हफ्ते के 2 दिन, रोजाना के 2 तालीम और महीने के 3 दिन। उसमें सवार रहना है ताकि माहौल में रहे और माहौल हमारे साथ रहे ताकि हम महसूस रहे। वरना गर्म गर्म चाय बनकर आई थर्मस से बाहर आ गई तो बाहर की निगाह ठंडी है, वो चाय को ठंडी कर देगी। हम फिजा में नहीं रहे हम भी ठंडे हो जाएंगे। तो ठंडा रहना भी नहीं और किसी को ठंडा होने देना भी नहीं। तो सब नियत करते हो पाबंदी से करेंगे? कौन कौन नियत करता है? अब ऐसा करो कि अब इसी नियत कर लो। देखो एक भी जाने के लिए जाना बनाए जहाँ बैठे हो अपने हल्के वालों के साथ बैठो और उनको लिखवा दो कि भाई इंशाल्लाह मैं 2.5 घंटे फला वक्त में दूंगा, मैं 3 दिन फला खड़ी में दूंगा, साल का चिल्ला में फला वक्त में दूंगा। इसी नियत कर लो। क्यों नियत कर लो? अल्लाह बंदे को जो देता है वो नियत पर ईश्वर देता है बोलो? अल्लाह बंदों को नियत पर देता है। अब क्या करेगा? कर ले लो ये नियत सुन लेना, ये नियत करेगा तो करने वाला बनेगा। तो क्या करे इसको नियत ही ना करने दो ताकि ये करने वाला न बने। आप क्या कर लो इंशाल्लाह उसका लकमा नहीं बनेंगे, हम नियत करके ही जाएंगे।
रखूंगा और फलानस में 3 दिन दूंगा ये लिखवा दो। और फिर जब ये पर्चे तैयार हो जाए उनको अपने मशवरों में लाओ, मस्जिद के मशवरे में और अपने हल्के के मशवरे में कि भाई हमने असाइन किए थे देखो ये हमें करना है। कमजोरी आ जाए इन परिश्रम के जरिए से इसको ताजा करें अपने महाना मशवरे में और अपने अपने हल्कों के मशवरे में अपने मस्जिदों के मशवरे में इसके जरिए से काम किया जाए। ठीक है इंशाल्लाह। अब हल्के वाले बहनों और अपने असाइन करके जाओ इन 5 कामों के करने का असाइन कर दो। देखो आपके हल्कों के बॉर्ड लगे हुए हैं, हल्कों के बॉर्ड लगे हुए हैं, देखो यहाँ से पर्चे ले जाओ। हर हल्के का साथी अपने हल्के वालों के साथ बैठ जाओ और यहाँ से पर्चे ले जाओ। हल्कों के जिम्मेदार अपने साथियों को जोड़ लें। अभी हमने आपको जाने का नहीं कहा है, अपने हल्के वालों के साथ बैठ जाओ, अपने अपने इलाके वालों के साथ और उसके अजाइन कर लो। भाई हल्के वाले ले जाओ, हल्के में से एक मस्जिद वाला अपने साथियों के साथ बैठा मस्जिद वाले और मस्जिद वालों के साथ बैठ जाओ, अजाइन कर लो। देखो शैतान ने पिंडा से बाहर ले जाएगा, आप लोग कह सको हम पिंडा से बाहर नहीं जाएंगे। वो हमें वरगड़ाएगा फटवाएगा लेकिन हमें फंसना नहीं है। हर हल्के के साथी अपने साथियों को जोड़ ले, हर हल्के के साथी अपने साथियों को जोड़ ले और अपनी मस्जिद वालों को लेकर जाए और जो खड़े हैं उनसे दरखास्त कर जाए। भाई जो खड़े हैं उनसे दरखास्त